نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر آج یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. میں نے سورت الاسر اس شعور کے ساتھ پڑھی کہ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سب ایک بہت تیز چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت جلدی ہمارا اسٹیشن جہاں ہم نے اترنا ہے وہ آ رہا ہے. میں آپ سب کی نظروں کا تھوڑا سا امتحان چاہوں گی, آنے والوں کو آنے دیں. میں نے جو جملہ بولا آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا آخری؟ میرا خیال ہے کافی لوگوں نے نہیں سنا. کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے. میں دہراتی ہوں, میں نے کہا کہ ہماری زندگی یا اس وقت ہم سب کی مثال ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر کی طرح جس کی اترنے کی جگہ آ رہی ہے, یعنی وہ اسٹیشن جس پہ مجھے اترنا ہے وہ آ رہا ہے. اپنے ذہن میں ذرا لائیے, اگر کبھی بھی آپ نے ٹرین میں یا لوکل بس میں سفر کیا ہو کیا کیفیت ہوتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ دو تین اسٹیشن پہلے ہی اپنی چیزیں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں, باندھنی شروع کر دیں گے. اگر سیل فون لگایا ہوتا اس کو ریپ اپ کریں گے, کوئی بک کھولی بھی تھی اس کو بند کر دیں گے اور جتنا ممکن ہوتا ہے دروازے کے قریب آ جائیں. کبھی آپ اور میں سوچیں کہ آج بھی ہم زندہ ہیں اور پھر ایک دن ہوگا کہ ہم زندہ نہیں ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ مجھے آپ کو کیا پتہ کہ ہماری زندگی کی ٹرین اس وقت کس جگہ کھڑی ہے. اس لیے شعور کے ساتھ جینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر محرم کے مہینے میں کیوں رکھا؟ تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو جانے کے لیے تیار پاتے ہیں. آج ہم خاص طور پہ محرم الحرام کے ناطے سے جس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے وہ کیا ہے کہ محرم الحرام اور آج کا مسلمان. ہم پیچھے سن چکے کیا فائدے ہیں اس کے, روزے کی فائدے, اس کی حرمتیں ڈے ون سے تھی. یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جس کو حرام مہینے کہا جاتا ہے. لیکن آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے ہی اگر پوچھوں, بالکل آپ کسی بھی پہلے سے کسی ذہن میں نہ بیٹھی اور میں ایک دم آپ سے بولوں کہ محرم کیا ہوتا ہے یا لفظ محرم کے ساتھ کیا آتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ واقعہ کربلا یا ماتم یا کالے کپڑے پہننا, سوگ کا مہینہ اور اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے اور اس مہینے میں کسی شاید بہت کچھ ہے. ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گی, کچھ کوٹیشنز جمع کی ہیں آپ کے لیے. اور میں خود پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ دنیا میں ابھی بھی اتنی جہالت ہے. باقی باتوں کو تو پیچھے کر دیجئے. اور ہر سپیکر سے میرا خیال ہے رمضان جب بھی کوئی ایسے موقع آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں. چلے میں اپنے آج کے لیکچر کا جواب ادھر سے شروع کر دیتی ہوں کہ کیا, یعنی ہماری یہ جو ایک کانسیپٹ آج کے مسلمان کا کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے, یعنی یہ قسم کی کہہ لیجئے کہ رانگ تھنکنگ ہے یا غلط سوچ ہے آج کے مسلمانوں کی کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے. آتی ہے یہ سوچ؟ بالکل آتی ہے. ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کالے کپڑے کسی کو پہننے دیکھنے تو کہنا اچھا یہ محرم کی وجہ سے پہنے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ وہ 10 دن تک کالے کپڑے پہنتے ہیں. اب کوئی برقع کالا روز پہنتا ہے وہ روز آج بھی پہن لے, کوئی حرج نہیں. کالے کپڑے آپ پورا سال جب دل چاہتا ہے پہنتے ہیں پہنے, بلکہ اتفاق ہے میں نے تو آج سوچا بھی نہیں. اور میں نے اب اپنی بات پہ غور کیا, میں نے بھی بلیک پہننا ہوا, کوئی بڑی بات نہیں. میں نے واقعی نہیں سوچا کہ یہ اس وجہ سے یہ نہیں ہے. لیکن آج ہم مسلمان کس دین پہ ہیں؟ آج تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں اس لیے آپ کو ذرا سا اپنا ٹیسٹ کڑوا محسوس ہوگا, کیونکہ عموماً ان مہینوں میں یا ان باتوں پہ بات میں نہیں کرتی. یعنی اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ میں فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. چند باتیں سمجھیں گے نا بیسک، تو پھر باقی باتیں بتاؤں گی آپ کو کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے اور کرنا چاہیے. بلکہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس مہینے کے وہ فضائل معلوم ہوتے ہوئے دیکھے جو کہ ہیں اصل میں. خرافات میں جب پڑ جاتے ہیں نا تو اصل چیز نکل جاتی ہے. لیکن پہلے چند بیسک باتیں، آپ میرے ساتھ رہیں اور اس وقت پوری بات سننے میں جہاں بھی آپ کو میری کسی بات میں کوئسچن یا تھوڑی سی فیلنگ آئے تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، میں آپ روک کے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ کا کیا کوئسچن ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب بیسک سمجھ آ جاتی ہیں نا تو پھر بڑی باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو پہلا میرا سوال آپ سے اور خود سے یہ ہے کہ اس دین اسلام کا سورس کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. اللہ نے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا. ہمارا سبق ہے کہ پچھلا ویک جو لاسٹ تھرسڈے کی تفسیر کلاس تھی، اس میں کیا کہا تھا؟ علی قلبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر دین اسلام یا قرآن نازل ہوتا تھا. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحان تعالیٰ. جس کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، روح الامین بھی ان کا نام آیا ہے اور روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے. کس کی طرف بھیجا؟ قلب محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کی، یہ جو جسم کے کان ہیں نا، ان آنکھوں سے نہیں سنتے، ان کانوں سے نہیں سنتے تھے پیغام، دل کے کانوں سے جبرائیل علیہ السلام وہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب منتقل کرتے تو اللہ کے نبی تک پہنچتی. وہ ساری کیفیات بھی ہو گئیں. میرا سوال ہے کہ آپ کا اس بات پہ شرح صدر ہے کہ اللہ نے جو پیچھے سے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے پورے کا پورا آگے پہنچایا؟ بالکل بھیجا، اسی لیے ان کو روح الامین کہتے ہیں. روح کہتے ہیں روح کو، آپ اردو میں بھی جانتے ہیں. امین کہتے ہیں امانت دار، یعنی بڑی امانت دار روح ہے وہ. آپ قرآن پاک میں اس پہ آیتیں موجود ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ایک پیغام میں سے یا اللہ کی طرف سے جو وحی ان کے ذریعے بھیجی جاتی تھی انبیاء کرام پہ، اس میں سے کچھ چھپایا نہیں ہے. فرسٹ تھنگ، یعنی پہلی چیز، کوئی بھی چیز ہے، آپ پاکستان سے ایک پیکج ویٹ کر رہے تھے، اس کا ملا نہیں. اب دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو بھیجنے والے نے نہیں بھیجا، دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈاک خانے سے آگے نہیں گیا، تیسری صورت ہو سکتی ہے کہ یہاں پوسٹیج میں گم ہو گیا، اور چوتھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں آیا لیکن گھر والوں نے چھپا لیا اور آپ کو نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کو بھیجنے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام کیریئر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنا تھا. اور اللہ تعالیٰ سورت مائدہ میں کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تم پر اپنا دین پورا کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پورا کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دین کا جو رخ لوگوں تک آنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی باتیں لوگوں سے متعلق تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے پوری ہو گئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہود نے اس بات پہ حسد کا اظہار کیا تھا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کبھی تم مسلمانوں کی بجائے ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس دن خوشی مناتے، عید کرتے. کیونکہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کی خواہش تو ہے نا، تو جو پیچھے سے پیغام تورات اور انجیل کے تھرو چل رہا تھا وہ قرآن پاک میں آ کے بیٹھ گیا، آ گیا. تو یہ کہتے تھے ہمیں افسوس ہے کہ دین ہم پہ پورا کیوں نہیں ہوا، تم پہ کیوں ہوا ہے. بہرحال پیغام پورا ہے، یہ گھر بن رہا تھا. آپ اس گھر کو بنانے سے پہلے اس میں ادھر دیوار نہ بنائیں، ادھر نہ بنائیں، بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں، آپ کو پورا اختیار تھا. آپ پورا گھر بن گیا، بنیادیں کھد گئیں، دیواریں بن گئیں، اور آپ سوچیں کہ اس میں کوئی رینوویشن نہیں ہو سکتی، آپ یہ پلر نہیں نکال سکتے یہاں سے، یہ دیوار یہاں سے نہیں ہٹ سکتی. اب گھر بن گیا، اب آپ اس کو بڑا کرنا چاہیں تو کیسے بڑا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. چھوٹا کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق دین پورا کیا، کسی دور میں ادھورا دین نہیں دیا، یہ بھی یاد رکھے گا. لیکن اس آخری صورت پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دے دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانے میں کمی کی، نہ جبرائیل علیہ السلام نے امانت میں خیانت کی، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا کہ جو آپ کو دیا آپ نے چھپا لیا کہ نہیں میرا اپنا عمل ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں. نعوذ باللہ، جیسے میں درس دینے آئی ہوں اور جو بات میں کہنے آئی ہوں وہ میرا اپنا ہی نہ عمل ہو تو میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی، ایسے ہی یہ کہیں گے پھر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نبی سے ایسی امید تو نہیں ہے نا. تو دو صورتیں ہوتی ہیں، कि जो बात थी वो बताने से रोक ली, या दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह ने नहीं कही तो नबी सल्लम ने अपने पास से कह दी। कुरान में आता है वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अक़ाबील लाख़ज़ना मिन्हु बिल्यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हु अल्वतीन, यानी अगर नबी सल्लम ने कुरान की कोई आयत छुपानी होती ना तो ये छुपाते। अब आप में से कुछ को नहीं पता चला होगा, इस आयत में बराह रास्त नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने एक किस्म का एताब किया है कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई बात घड़ के हमारी तरफ मंसूब कर देंगे तो फिर हम आपके ऊपर बात करेंगे। जरूरत नहीं होती वो अगले लफ्ज़ पढ़ने की, जाके आप खुद तर्जमा पढ़ लीजिएगा। ये सूरत क़यामत है, सूरत दाहर है या क़यामत है, 29वें पारे की कोई सूरत है, बाद में चेक करके देख भी सकते हैं। तो बात समझ आ गई कि सब मुकम्मल दीन पे आ गए। अब हो गया, अब मुझे आपको क्या कहा, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इताअत से मुंह ना फेरो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए। खाना पकाया ज़ाया हो जाए, जल जाए, पकी हुई हंडिया गिर गई, ज़ाया हो गई ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत है, जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद शरीयत में नहीं, शरीयत में नहीं है जिसकी बुनियाद, तो वो काम मरदूद है। मरदूद क्या है? रिजेक्टेड। देखिए एक नोट है आपके, नॉर्वे का 100 क्रोन का नोट है, 1 50 का भी है ना। कोई एक बंदा आपके पास आए और कहता है ये 80 क्रोन का नोट है, तो आप कहते हैं ये कहाँ से आ गया, क्या ये हुकूमत ने बनाया? वो कहता नहीं मैंने बनाया। कितने स्टोर्स हैं जो इस नोट को एक्सेप्ट करेंगे? और अगर जो चला रहा है वो उसका नोट नहीं रिजेक्ट होगा, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे लोग, क्यों? नकली नोट। अब एक हुकूमत में एक करेंसी पे कोई अपनी मर्जी की मोहर लगा कर दे दे तो वो रिजेक्टेड है। तो इसी तरह से याद रखिए, ये पहली बात जो आज की थी समझाने वाली मुझे आपको, और आपने मुझसे समझनी और मैंने आपसे सीखनी है, वो क्या है, दीन इस्लाम का मतलब क्या है। कोई काम जिसको आप नेकी समझ के कर रहे हैं, उसके करने से पहले एक दफ़ा देख लीजिए कि क्या अल्लाह और उसके रसूल ने ये हुक्म दिया। अगर इस एक क्राइटेरियन पे आप और मैं अपने आप को पक्का कर लें, ना मेरे जैसे स्पीकर्स आके आपको बहकाएंगे, ना कोई लोरी देगा, ना कोई सख्ती करेगा दीन में, ना आसानियाँ करेगा। आप ये कह दें कि हवाला दिखा दें, अब अगर वक्त होता ना तो मैं आपको अपने फ़ोन में से कुछ मैसेजेस पढ़ के सुनाती, जो कोई दिन खाली नहीं होता कि लोग इधर उधर से ग्रुप्स के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो इतना सवाब, अल्लाह का ये नाम इतनी दफ़ा पढ़ लो इतना सवाब, ये पढ़ के ये कर दो तो तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा बच्चे का, और ये कर लो तो वो कर लो। अल्लाह कहते फ़वैलु लिल्लज़ीना यक्तुबून अल-किताब बिअय्दीहिम, हलाकत है, तबाही है उन लोगों के लिए जो किताब अपने हाथों से लिखते हैं, सुम्मा यकूलू, फिर कहते हैं कि अल्लाह ने लिखा, यानी अल्लाह के लिखे को अपने लिखे को अल्लाह का लिखा बनाते हैं। तो मैं और आप शरीयत बनाने के लिए नहीं आए, शरीयत को मानने के लिए आए हैं। जैसे हम नॉर्वे में हैं, हम नॉर्वे की शरीयत मानते हैं कि नहीं? मसलन रेड लाइट पर हम रुकते हैं, ये नॉर्वे के लॉ में मौजूद है। हम किसी भी राउंड अबाउट पे घूमते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि इस तरफ राइट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हम सीट बेल्ट मानते हैं, ये नॉर्वे की शरीयत को मान रहे हैं। कभी आपने, मैंने पिछले 5-6 सालों में, या आप 20 साल से इधर हैं इस मुल्क में, कि आपने कभी नॉर्वे हुकूमत को कहा कि ये कानून अच्छा नहीं है तुम दूसरा बना लो? लो मैं बना दूँ, मैंने खुद ही बना लिया, आज के बाद रेड लाइट पर नहीं रुकना, ग्रीन पर रुकूंगी। भाई आपको किसने कहा? क्या फ़र्क है, मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगता है, मुझे रेड नहीं अच्छा लगता। हम तो चूँ चा नहीं करते, 1-19 से 20 का आप बिल का बिल में कोई कमी बेशी कर दें, अगले ही दिन आपको वो रेंट लगा कर भेज देंगे ना। तो जिस तरह हम दुनिया की चीज़ों को मानते हैं, इसी तरह याद रखिए कम अज़ कम इतना भी अगर हम दीन का लिहाज रख लेते तो आज हमारे दीन का वो हाल ना होता जो हुआ। अफसोस, दुख और तकलीफ की बात है। खुशी को गम समझते हैं और गम को खुशी समझते हैं। बस मुहर्रम की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर सिर्फ एक बात, जो कि मौजू आज नहीं, वो किसी और जगह फिर वो पूरा मौजू भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो। बस आप देखिए कि वाकया करबला, मैं इसको छेड़ नहीं रही इस वक्त, सिर्फ आपको बताने लगी हूँ कि वाकया करबला हमारे जहनों में आ जाता है मुहर्रम के साथ। हम उसको क्या बनाते हैं? गम, शोक का महीना। मैं आपसे पूछती हूँ और आप अपने दिल से पूछिए, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना ये खुशी की बात है कि गम की बात है? मुझे अल्लाह 10 बेटे दे तो मैं कहूँगी अल्लाह 10 के 10 तेरे रास्ते में शहीद हो जाए। हज़रत उमर तो फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की शहादत की मौत चाहिए, और चाहिए भी शहर मदीना में, नबी के शहर में चाहिए, मांगते थे ना। कोई हज़रत हमज़ा शहीद हुए, क्या ये गम की बात थी? जब 70 शोहदा शहीद हो गए सूरत आल इमरान में, आप पढ़ लीजिए गज़वे उहद में, क्या ये सफ़े मातम थी? उसी वक़्त तो हमरुल असद के लिए निकल गए, उसी वक़्त तो आगे और मामले थे, अल्लाह के नबी ने तो कुछ नहीं किया, क्या ये शोक की बात है? आप सोचें अपने ऊपर लें। अब आज तो हाल ये हो गया कि आज तो हमें ये कहते हुए भी खौफ होता है कि अच्छा अगर आपका बेटा शहीद हो जाए अल्लाह के रास्ते में तो आपको कैसा लगेगा। मुझे वो अस्मा याद आ रही हैं जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बहन थी, बूढ़ी थी बहुत, बड़ी उम्र की थी, और उनका बेटा जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर था वो तख्ताए दार पर लटका दिया गया, यानी ज़ालिम हुक्मरानों ने उसको जो भी किया तो फांसी पे लगा दिया। तो वो बेटे को की लाश के पास जाके खड़ा होकर कहती है मेरा बेटा ज़िंदगी में भी ऊंचा था, यानी ये मिंबर पे बैठता था, आज मर के भी मेरा बेटा ऊंचा ही है। और अपने बेटे को मैसेज दे के मैदान जंग में भेजती थी कि बेटा मुझे कल ये ना खबर मिले कि तेरी पुश्त पे गोली लगी है। पुश्त पे किसके लगती है? जो मैदान जंग से भाग रहा था, मौत आ गई। मुझे उस वक्त खुशी होगी जब लोग कहेंगे कि अस्मा तेरे बेटे के सीने में गोली लगी है। अब मुझे बताइए कि अस्मा को नहीं पता था बेटा फौत हो जाए, शहीद हो जाए तो वो फौत हो जाता है, ये वो नजरों से निकल जाता है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, उसकी बीवी बेवा हो जाती है। तो ये वही कहते हैं ना, जो ना खूब था वो खूब हुआ। बस एक छोटी सी मिसाल दे के आपको आगे ले चलती हूँ कि खुशी को गम कह दिया, और अगर गम मनाना है तो फिर तो सारा साल गम मनाएंगे आप। कैसे मनाएंगे? पहले आप सबसे देखिए, अगर तरतीब के साथ भी देखें तो जो मारूफ सहाबाए कराम हैं उनमें से अगर आप देखें तो हज़रत सुमैया अलैहिस्सलाम शहीद हुई, हज़रत यासिर उनके बेटे थे, अम्मार बाप थे यासिर और अम्मार बेटे थे, मदीना में इनको शहीद किया, कहते हैं कि इस्लाम की पहली शहीदा थी। वैसे नाम अभी मोहसिन इंसानियत के दौरान आपको ये भी सुनाया था कि कुछ नाम उससे पहले भी हैं। चलिए मदीना में आ जाए, हज़रत हमज़ा शहीद हो गए गज़वे उहद में, नबी सल्लम के चचाजाद भाई, दूध शरीक भाई भी, यानी दूध शरीक भी थे, चचाजाद भी थे और दोस्त भी थे। अल्लाह के नबी को इतना रंज था कि हिंदा को कहा मेरे सामने ना आना, तो मेरे सामने आती है तो मुझे अपना चचा याद आता है, क्योंकि इन हिंदा ने उनका कलेजा चबाया था, तकलीफ इतनी थी बट शोक नहीं मनाया। फिर आप देखिए हजरत पूरी तारीख इस्लाम देख लीजिए, चारों तरफ से देखिए, अगर आज की बात करते हैं कि अगर किसी भी ऐसे मौके को बुनियाद बनाकर आप शादियां नहीं करते, चलिए एक दूसरी बात पे ले आते हैं, लोग कहते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी, क्या कर सकते हैं? सवाल है, तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, माशाल्लाह आप सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चूर हैं, हम सब नबी सल्लम से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, इसमें तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान की नीयत पे ज़रा सा शक भी नहीं है, वो नमाज ना पढ़े उसको नमाज से मोहब्बत हो ना हो लेकिन मोहम्मद सल्लम से बहुत है, उसको रोज़े से मोहब्बत हो ना हो, उसको बुराइयों से नफरत हो ना हो लेकिन उसको नबी सल्लम से मोहब्बत बहुत है। नबी सल्लम की किस बेटी की शादी मुहर्रम में हुई आपको पता? फिर ये कैसी मोहब्बत है? आपकी प्यारी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मुहर्रम में हुई। आप मुझे बताइए, अब उम्मे कुलसूम जैसी प्यारी बेटी और आज की हमारी बेटियाँ, अगर मुहर्रम में शादी मनहूस होती, ख़राब होती, घर टूटते और खुश ना रहते लोग, तो क्या अल्लाह के नबी अपनी बेटी को भेंट चढ़ाते? आप तो उस शख्स को बेटी दे रहे हैं कि जिसके लिए कहा कि अगर मेरी 70 या कितनी बेटियां भी होती तो एक के बाद एक एक मैं उस्मान को देता रहता, तो कितनी प्यारी शादी नहीं भी, कोई खराबी हुई उसमें? आप तारीख के वो बीसियों वाकया जमा करके देख लीजिए, आपको देखेगा सहाबा की जिंदगी में कुछ नहीं रुकता। फिर दूसरी बात है, अगर आप देखें कि किसी की शहादत से या ऐसे मौकों से अगर शादियां रुकती तो फिर क्या होता? 365 दिन होते हैं ना साल के, ऐसे ही है ना, जब 365 दिनों को आप 1, 2, 3 करके लिखेंगे ना, तो आप पूरी तारीख इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज को देख लीजिए, हज़रत उमर शहीद हुए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद हुए, फिर हज़रत हमज़ा शहीद हुए, इसके तो दलाइल सारे कुरान से हदीस से भी हमें मिलते हैं ना। फिर आप देखिए 70 शुहदा बदर के हुए, तो 70 × 73 तो यही हो गए 73। फिर आप देखिए कि करबला के मैदान में जितने भी शहीद हुए, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हम कह देते हैं क्योंकि वो अल्लाह के नबी के नवासे थे और अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक थे। मुझे बताइए साल के 365 दिनों में से आप कितने दिन फिर शादियां करेंगे? रमजान में लोग कहते हैं नहीं करते, 30 दिन वो निकाल दीजिए, सफर में नहीं करनी और 13 तेजी में तो बिल्कुल नहीं करनी, वो भी निकाल दीजिए, कब करेंगे? पूरा साल। आप ये जुमला आज लिखिएगा, इस लेक्चर का जेम बना दें, 365 दिन साल के 12 महीने एक से लेके आखिरी तक हर दिन शादी कर सकते हैं। कई काम है ना वो कुछ दिनों पे मना है, जैसे ईद के दिन पे रोजा मना है। आप ईद उल फितर का दिन है आज इस शहर में और आज रोजा नहीं रख सकते, हराम हो जाएगा क्योंकि मना है, खाने पीने का दिन होता है। ईद उल अदहा का दिन है, आप रोजा नहीं रख सकते, रोजे जैसी इबादत है। कुछ कैफियत ऐसी हैं जिसमें फर्ज नमाज भी हमारी साकत हो जाती है, आप सब जानती हैं सिस्टर्स, है ना। फराइज तक पीछे होते हैं लेकिन शादी हर महीने हर मौसम हर वक्त हो सकती है। आप रोजे की हालत में हैं, आप मुहर्रम में हैं, आप सफर में हैं, आप रबी अव्वल में, कौन रोकता है आपको? पर लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि खुराफात करते हैं। ये मैंने मेरे अपने कानों ने किसी की बात सुनी। अब आप देखिए कि मैं आपसे सीधी बात करती हूँ, मुझे आपसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं वो बात करती हूँ जो मुझे अल्लाह और उसके रसूल की समझ आती है। मोहब्बत है आपसे इसलिए करती हूँ, वरना तो मैं बहुत सारी आपको ऐसी बातें सुना दूं कि आपको मेरे से तो बड़ी मोहब्बत हो जाए लेकिन दीन आपकी मर्जी का हो जाए। एक ऐसी जगह थी मैं, तो वहां भी लोगों ने यही सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि क्या शादी रमजान में कर सकते हैं? अब मैंने आपको पूरे यकीन से कहा कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? वैसे कर सकते हैं शरण, बट जो आजकल शादी करने के तौर तरीके हैं तो बेहतर है कि ना की जाए। बोला क्यों? फिर मेहंदी कैसे होगी, फिर उपटन कैसे लगेगा, फिर नाच टाप कैसे होगा? कभी आपने सोची ये बात कि रमजान की बरकतें छोड़कर एक बंदा ईद के चांद पर रम तैयारियां क्यों करता है शादियों की? आपने नोट किया ना पाकिस्तान में अक्सर हमारे कल्चर में यही होता है, रमजान के बाद कहते हैं अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, ईद का चांद है रमजान की है। ये किसने कहा आपको? मुझे अल्लाह ताला कहते हैं फा तू भी कोई दिखाओ तो सही, कोई दलील है, कोई किताब है, कोई कुछ है। आज मुसलमानों में ये हालात हो गए हैं। एक सादा, मैं आप सबको सादे लोग कहती हूँ वल्लाही, अगर आप लोग कुरान सुनते हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे दो चार हदीसों के नाम पूछूं आपको नहीं आए, मैं आपसे चंद सुन्नतों के हवाले पूछूं ना आए ना, तो मेरी नज़र में आप इनोसेंट पीपल हैं, वल्लाही मासूम लोग हैं आप। क्यों? क्योंकि आप तक वो सच्चा और खूबसूरत दीन पहुंचा ही नहीं। आज सादा लौह सिंपल लिविंग लोग मुसलमान सुन्नत और बिदत का फर्क तक नहीं जानते, और हम जैसे दीनदारों ने उनकी आंखों पे इतनी पट्टी चढ़ाई हुई है कि तुम्हें क्या पढ़ने की जरूरत है हमसे पूछो आके, मोनोपोली है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आज आप देखिए कि मुसलमानों की जहालत का हाल क्या है कि शबे बारात के मौके पे आतिशबाजी भी करता है, पटाखे भी फोड़ता है और रात को इबादत भी करता है, अगले दिन सुबह उठ के कब्रिस्तान भी चला जाता है कि नहीं है? उधर दिवाली है तो उनके साथ दिवाली भी मना लेंगे, अगर इंडिया में आप रहते हैं तो आप दिवाली मना लेंगे उनके साथ, वो आपके साथ आके शबे बारात पे 15 शबान को पटाखे भी फोड़ लेंगे, सुबह हलवा पूड़ी भी बांट देंगे। हमने अपने, मुझे अभी भी शऊर से याद है, इन बच्चियों की तरह की हमारी उम्र थी, पाकिस्तान में हम रहते थे, शबे बारात जब भी जिसको लोग कहते हैं 15 शबान, थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता खटकता था तो हमें बच्चों को पता होता था हलवा पूड़ी आया, सुबह मिलता भी था, और ससुरालों में लोग बच्चों के ससुराल में कभी हलवे और पूड़ियां भेजी, कहां से ही हलवे पूड़ियां भाई, कुछ नहीं पता, मरगूला मिक्सचर जैसे वो पैनकेक मिक्सचर है उसको मैं कुछ नहीं पता, अंडे डाले, दूध डाला, चीनी डाली, जो डाला डाल दो। हालांकि उनको ये नहीं पता मुसलमानों को कि आग से खेलना आतिशबाजी और आतिशपरस्ती मजूसियों का काम है। कल का एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, मेरे हस्बैंड अपने चंद दोस्तों के साथ किसी और की कब्र पे दुआ के लिए गए, तो मुझे आके सुना रहे हैं, कहते हैं कि दुआ क्या मांगते हैं हम लोग, खुद ही फिर कहने लगे रब्बन आतीना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत वकीना अजाबन नार। मैंने कहा जी हुआ क्या? कहते क्या कहते हैं, वकीना अजाबन नार, क्या अल्लाह में आग से बचा, मैंने कहा फिर हुआ क्या है? कहते मुसलमानों की कब्र पे, यानी मुसलमानों का, आपको पता है हेब्रोतन पे जो कब्रिस्तान है, मुस्लिम्स की कब्रों पे चिराग जल रहे हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं, और किसी के ऊपर स्टैचू वो नहीं भालू सा बना हुआ है। मैंने कहा आपको गलती लगी है? कहते भाई मैं गलती क्यों कहूंगा, आपको पता कि थोड़ा सा पोर्शन अलग है, दूसरा हिस्सा नॉन मुस्लिम्स का। कहते ये मुझे बताओ कि इस कब्र के ऊपर किसी ने जब आग जला के मोमबत्ती रखी, उसने नहीं सोचा कि हम तो कहते हैं वकिन अजाबन नार, और हम अपने मरने वाले की कब्र पे मोमबत्ती ही कह ले, लेकिन आग ही जलाई ना, शऊर नहीं है। आज मुसलमान यकीन करें कि अपने इस हाल पे जितना गम करे, जितना अफसोस करे, वो थोड़ा है, और इस दर्द की दवा मौजूद है। दवा जब मौजूद होती है ना, फिर ले लेनी चाहिए, फिर ये नहीं कहना चाहिए कि हम इलाज किए बगैर मर जाएंगे। जहालत का इलाज इल्म है, लाइल्मी का इलाज इल्म, आप इल्म ले लीजिए, जान लीजिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाएंगे। लेकिन आज दुनिया ने हमारे लिए इतने रास्ते खोल दिए मसरूफियतों के, कि आज का मुसलमान क्या करता है। चलिए एक और भी बात सुन लीजिए, कौन सा महीना है आप सब जानते हैं? आप जानते हैं कौन सा महीना है? मुहर्रम का। इससे पिछला महीना कौन सा था? जिलहज का। जिलहज का महीना गुजर गया, जिलहज में लोग कहाँ गए? हज करने। हज करके लोग आए तो आज तक उनके साथ क्या हो रहा है आपको पता है? कोई एक दिन भी नहीं खाली मिलता कि मेरे ये कान ये नहीं सुनते कि हाजी लोग थक चुके हैं अपने मेहमानों की खातिरें करके। कल रात को मेरे स्कूल में एक क्लास हो रही थी, तो वहां कुछ सिस्टर्स थी, उनमें से एक हज करके आई हैं। यकीन करें शिवा जस्ट लाइक, जिसको आप कहना चाहें कि रो पड़े, उस्ताद आप तो थक गए। एक अभी मेहमान को भेजकर वापस निकलते हैं तो अगले का मैसेज आता है। तो मैंने कहा आप लोग सारे एक ही दफा आकर क्यों नहीं कह देते हाजियों हारे, आप हमारे घर आ जाएं। आपको पता कि इसमें गुंजाइश है, नबी सल्लम और सहाबा कराम जब हज से आते थे ना, तो वो दावत पकाते थे, तो आप रोज जो हरे की पकाते हैं। यानी अब देखिए कि हज से लोग वापस आ चुके हैं, अभी तक क्लासों में वापस नहीं आए, पता नहीं बेचारों की नमाजें किस हद तक की। खुद बताते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी नमाजें मेहमान नवाजी में ख़त्म हो जाती हैं। कहाँ जाना है आज? हाजियों की दावत पे जाना है, आज उनको मुबारक देना है। किसी को बुलाया दर्स पे, कहाँ है? हज पे जाना है, वो हाजियों को मुबारक देने जाना है। किस बात की मुबारक? आप किस बात की मुबारक देने जाते हैं हाजियों को? आज देखिए आप, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का लेक्चर, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, बड़ा कड़वा है। बाद में दुआ करें को मीठा खाना खिला दें आपको, उसमें बातें कड़वी हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कड़वी बात से, जुबान कड़वी ना इस्तेमाल करूँ। कड़वी क्यों है? क्योंकि बीमारियां बहुत हैं। आज हमें ये सुन्नत और बिदत का फर्क ही नहीं पता, इल्म से शौक नहीं रहा, आंखों पे तासुब है, ये फुला है, ये फुला मसलक वाला, ये एक तरफ हम अल्लाह की रजा के काम कर लेते हैं, एक दफा अल्लाह की नाराजगी के काम करते हैं। रजब आएगा तो कुंडे भरेंगे, दूसरे लोग सवाब से करेंगे, अब उनको ये पता ही नहीं कि नबी सल्लम सहाबा ने उन्होंने किस तरह क्या किया। सदका करना उसकी बहुत सारी किस्में हैं। वो किसी का शेर याद आ गया कि ये उम्मत खराफात में खो गई, ये उम्मत खराफात में खो गई, या ये उम्मत खराफात में खो गई, बहुत दूर सुन्नत से ये हो गई। जो लोग काम ये करते हैं ना, वो सवाब समझ के करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं। कोई पागल है कि इतना खाना पका के लोगों को बांटे और उसको पता हो कि मुझे गलत होना है? कमी किसके? इल्म वालों की कमी है। हमने लोरियां दी, हलवे हमारे चलते रहे, हमारे नजराने चलते रहे हर महीने। और मजे की बात देखिए, आज इंडो पाक कल्चर में हर इस्लामी रिचुअल के साथ खाना जरूर है। हलवा पूड़ी शबे बरात में, क्या नबी सल्लम ने कभी हलवा खाया था? आपको पता, पूड़ियां बनी थी आपके द्वारा, आपने तो सारी जिंदगी मैदे की रोटी भी नहीं खाई। और जो खाने का नाम ही हलवा पूड़ी है, तो अरब लोग तो हलवा पूड़ी, उनको पता ही नहीं क्या होता होगा, तो इस्लाम कैसे हो सकता है? तो ये मेड इन पाकिस्तान या इंडिया है। आप कहते हैं कि जी मुहर्रम की हलीम, सुना भाई आपने, हलीम शरबत की सबील है। हलीम किन का खाना है? इंडिया पाकिस्तान का खाना है, समझिए सोर्स है ना, कहां से आई। देखिए सोना कहां से खरा मिलेगा? जहां से निकलता है, दुकान तक आते तक पता नहीं क्या बना, ज्यूलर ने उसमें क्या डाला नहीं। आप कहते खालिस होना चाहिए, जहां निकला वहां खड़े हो जाओ, जहां से निकल रहा कहना ये प्योर है। अभी दूध लेना है भैंस से, कहाँ खालिस है? भैंस के पास खड़े हो जाओ, जब उसके थनों से निकल रहा है ये खालिस है। उसके बाद खालिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दीन खालिस कौन सा है? जहां उतरा था उतर कर सूए हरम आया। आज भी अरब में जाके देख लें, सऊदी अरब से लेकर इर्द गिर्द के यूएई कंट्रीज में कम से कम काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हम हमारे ही मुल्कों के बहन भाई कुछ लोग वहाँ जाकर क्या कहते हैं, कभी ज़रा सुने होंगे आपने कमेंट्स, शायद मेरे से ही लोग ज़्यादा दुख सुख करते हैं जो मुझे याद रहती हैं बातें। लोग कहते हैं ये वहाँ जाके कोई नहीं जमात से नमाज पढ़नी, मेरे गुनाहगार कानों ने ये बात सुनी, यहाँ का मुसलमान सऊदी अरब जाता है और सऊदी हुकूमत को गालियां दे के आता है, आराफ अरफात के मैदान में खड़ा है, मस्जिद निमरा में खुतबा चल रहा है, वहां जमात आपको पता है जोहर असर इकट्ठी पढ़नी है और मगरिब इशा इकट्ठी पढ़नी है मुजदलिफा में, ना 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 ना, इतनी दूर से आए हैं चलो पूरी पढ़नी है। मौलवी साहब सारा हज का काफिला तो कुछ और कर रहा है, वो नहीं हम मस्जिद निमरा से बड़ी दूर है। याद रखिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ला तुबतिलु अमालिकुम। जब दीन शुरू जहां से हुआ उसको हमने अपनी मर्जी से रखा और मशहूर क्या कर दिया, सऊदी अरब वाले वहाबी हैं। भाई वो कहां से वहाबी हो गए, अगर वो वहाबी हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाबी थे। कभी सुना आपने लफ्ज वहाबी साहबा के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाबी थे, अबू बकर उमर उस्मान अली तार, ये क्या सारे वहाबी थे? मैंने तो आज तक थोड़ा बहुत जो इल्म लिया, मुझे तो आज तक लफ्ज वहाबी किसी किताब के किसी फिरके का नाम ही नहीं मिला। ये वो लोग करते हैं जिनका असल दीन से कोई विचारों का ताल्लुक नहीं होता, इधर की बातें सुनकर उधर। तो याद रखिए वमई यब तगी गैर अल इस्लामी दीना, जो कोई इस्लाम के सिवा दीन लेकर आएगा फले युकबल मिनहु, उसका कबूल नहीं होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि नॉर्वे हुकूमत 80 करोन का नोट नहीं कबूल करेगी क्योंकि वो इशू नहीं किया हुकूमत ने, वो 50 का करेगी जो उसकी स्टैम्प के साथ है, 100 का भी करेगी, 500 का भी होता है, 1000 का भी होता है, वो करेगी। आप मैं कैसे जबरदस्ती अल्लाह को जाके कहीं रखो, नहीं, नहीं नहीं मेरा है ये अमल, अल्लाह जी कर लेना कबूल, मैंने बड़े दिल से किया था, मेरी दादी बड़े शौक से ये काम करती थी, कर लेना कुछ नहीं होता, का फल योक बला मेनो, सॉरी हम नहीं, ये नहीं हो सकता। बल्कि बहुबा फिल आखिरत मिनल अक्सरीन, आखिरत में वो सबसे ज्यादा अक्सर, अक्सर कहते हैं बैंक करप्ट को, दिवालिया ही निकल गया जिनका, वो कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना सनम मिला ना खुदा मिला। आज हम मुसलमानों का हाल यह है कि हम जो इबादत भी करते हैं उस पर भी अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है कि अल्लाह हमारी तारीकियों जहालत की तारीकियों के बादल उठा और हमें इल्म की बात है। आपसे इस जगह बैठकर कोई बात ना तो जज्बात में करूंगी और ना मैं आपसे कोई अपने पसंद के किसी आलिम मुफ्ती या अपने किसी स्कूल ऑफ थॉट को सामने रख के करूंगी। आज तक जब से बात शुरू हुई है काल अल्लाह व काल रसूल, ये बैठे हैं चंद लोग, इनसे गवाहियां ले लें इस जुबान से, अगर आज तक इन्होंने अपने किसी उस्ताद का भी नाम सुना हो तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं। हमारे दो ही बड़े हैं, आसमान पे अल्लाह है और जमीन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इमाम की जरूरत नहीं है, हमें उनके बाद किसी बाद वाले इजाफे की जरूरत नहीं है। तो ये जो चंद बातें आपको एक बेसिक समझाई है, क्योंकि रोजे रमजान में रखते हैं आप, 30 रखते हैं ना, मैं आपसे एक सवाल करूं, आप रजब में क्यों नहीं 30 रोजे रख लेते, फर्क तो नहीं कोई पड़ता, वही सहरी वही इफ्तारी सब कुछ। आप रोजे आपने देखे कितने लंबे थे, इधर सबको ही पता है गर्मी भी पाकिस्तान में कितनी थी, इंडिया वालों ने कितनी गर्मी में रखे, तो क्यों ना किया इस दफा दिसंबर में रख लेते हैं, छोटे भी रोजे ठंडे भी रोजे, कोई जरूरत करता है इसकी? वजह किसने बताया आपको रोजे रखने हैं रमजान में रखने? शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहुल क़ुरान, अल्लाह सूरह बकरा 183 में कहते हैं ये रमजान का महीना है जिसमें हमने तुम पे रोजे फर्ज किए। ये कुरान हम तक कैसे पहुंचा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम ये जरूरत नहीं करते। चलिए एक छोटी सी मिसाल आपसे ही लेती हूं, नमाज पढ़ते हैं ना आप, मैं एक रकत की बात करते हैं, हम नमाज की रकतों की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ नमाज के तरीके में एक रकत, पहले खड़े होते हैं अल्लाह अकबर, फिर हाथ बांधते हैं क्याम, फिर रुकू, फिर खड़े होते हैं, फिर सीधे होके सीधे सजदे में गए, फिर दो सजदे करके खड़े होते हैं, इसको एक रकत कहते हैं ना, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक रुकू क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, सजदे दो तो रुकू भी दो, या फिर दूसरी बात कीजिए, एक रुकू एक सजदा, चूज ही कर लेते हैं कभी या रुकू कर लो या सजदा, कभी किसी एक फिरके या मसलक या एक मुसलमानों में बिगड़े से बिगड़े मुसलमान ने भी कभी आपसे ये कहा कि नाना नाना मैं ऐसे नहीं नमाज वैसे पढ़ूंगा? किसने दी नमाज? वमा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے یہ دے دیا کہ آپ اس طرح سے وہ چیز لے لو جو میں نے دی ہے، جو تمہیں نہیں دی اس کو چھوڑ دو. تو نماز جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا، روزے رمضان میں رکھنے اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں. ذی‌الحج میں کتنا رش ہوتا ہے، 8-9-10 ذی‌الحج میں ساری دنیا سے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو 3 شفٹوں میں حج کر لیں، ذی‌الحج میں کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ رجب میں چلے جائیں گے، کچھ بھی ادھر سے ذی‌قعدہ میں چلے جائیں، سیم وہی کچھ کریں، سب کچھ وہی کریں. کبھی کیا کسی نے؟ حاجیوں کی کمی کر دو، کوٹا مقرر کر دو، لیکن ذی‌الحج ہی کی تاریخوں میں کرنا. آپ صرف ایک عمرہ کر لیں، یہاں سے احرام باندھ کے گئے، 7 چکر آپ نے کعبہ کے گرد یوں لگانے ہیں. میری انگلی سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں نا جو لوگ گئے ہیں، اینٹی کلاک وائز، گھڑی کے خلاف. اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں حجر اسود کے پیچھے، پھر آپ نے پیٹ بھر کے زمزم پینا، اور پھر آپ نے صفا اور مروہ کے 7 چکر، یہی ہے نا عمرہ. پھر اپنے بالوں کا جو بھی حصہ کٹوانا ہے کاٹ دیا، عمرہ ہو گیا. آپ کیا کریں؟ صرف ایک کام کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہے، احرام پہن لیا جی ٹھیک ہے مال. تو کعبہ میں جا کے نا سارے یوں چکر کر رہے ہیں، تو آپ الٹا شروع کر دیں، میں گھڑی کی سوئی میں چلوں گا، ادھر بہت رش ہے، اس کمرے کے ارد گرد گھومنے کی کیا ضرورت ہے، میں اندر کے کسی پلر کے ارد گرد گھومتا ہوں، عمرہ ہوگا. 7 چکر بہت زیادہ ہیں، 3 بہت ہیں، کرتا ہے کوئی؟ اور 7 یہ کر لیے ہیں صحیح نہیں ہوتی مجھ سے. جس نبی نے یہ کچھ دیا ہے نا، اسی نے مجھے آپ کو باقی بھی دین دیا ہے. شادیوں کے طریقے، کمانے کا طریقہ، بچوں کی تربیت کا طریقہ، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا دیکھو کیا سنو، کیا نہ دیکھو کیا نہ کرو. اور اس کے لیے سیدھا سا طریقہ، اقرا بسم ربک اللذی، اقرا بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. آج آپ میرے وہ کہنا چاہیے کہ دل کا پھپھولا ہے یہ، سچی جو بات ہے، اس پہ میں ایموشنل ہو جاؤں تو مجھے آپ بھی معاف کر دیں. آج ہمارا حال یہ کہ ہماری امت علم سے دور ہے. حاجیوں کو مبارک دینے کا شوق ہمیں ہے، ان کی دعوتیں پکائیں گے ہم، عیدی بانٹیں گے ہم، بکرا بھی کاٹتے ہیں ہم، روزے بھی رکھتے ہیں. سچی بات ہے، ہمارے امت پاکستانی لوگوں میں روزے بھی رکھتے ہیں، بٹ نمازی سارے نہیں ہیں، اور چلے نمازیں بھی جس حد تک پڑھ پڑھا لے، علم کا شوق نہیں ہے، ہم علم دوست لوگ نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو اس دن بچے کی گریجویشن ہو جاتی ہے دین کے نام پہ جس دن اس کی رسمیں آمین ہو جاتی ہے. 3 سال کا بچہ ہے تو سارے گھر والوں کو، فیملیوں کو بلاؤ، آج ہمارے بچے کی بسم اللہ ہے، مسجد میں رکھیں گے تو اور بڑی رکھیں گے، مولوی صاحب سے کہیں گے ذرا آج درس بھی دیں کہ بچے کا قرآن، سب آئیں گے، بچے کو تحفے دیں گے، آج اس نے بسم اللہ پڑھی، بہت اچھی بات ہے. بٹ ہمارا کلچر اس کو رسم بنا گیا. 2-3 سال تک مولوی صاحب کی کوششیں ہیں، ماں باپ کی بھی بہت کوشش ہوتی ہے، میں مانتی ہوں، انہوں نے بھی وہاں جا کر بچے کو چھوڑا لیا، بہت بڑی بات ہے، اللہ قبول کرے سب کی کوششوں کو. اب ہوا کیا، 3 سال میں ماشاءاللہ بچے نے صورت ناز پہ آ گیا، پھر ماں سارے خاندان کو بلاتی ہے، آج میرے بچے کی آمین ہے، اور آمین کے ساتھ کہتے ہیں ختم. بچے سے پوچھا اب قرآن پڑھو، کہتے ہیں اب کیوں پڑھنا ہے، وہ میری تو ختم ہو گئی تھی. کیا بولتے ہیں آپ اس کو ختم ہونے کو، کچھ کہتے ہیں؟ وہی ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی آج آپ دیکھیے کہ ہم بچے کی اس عمر میں جب اس کا قرآن اب کھلنا ہے، ابھی تو اس نے لفظوں کو پڑھا ہے، آپ وہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اور کچھ ماشاءاللہ آپ جیسے اچھی سوچ رکھنے والے واقعی لوگ، بہت ایسے بھی بہت سارے پیرنٹس ہیں ہمارے کلچر میں، ان کو کیا شوق ہے، حافظ بنانا ہے. ایک کو تو ضرور بنانا ہے، ایک ماں تھی اس کے 4 بچے تھے، کہتی اس ایک کو میں نے ضرور حافظ بنانا ہے. کیوں؟ کچھ تو آخرت بن جائے. بھئی یہ ایک کو حافظ بنا کے آپ اپنی آخرت بنانا چاہ رہی ہیں، تو وہ باقی 3 آپ کے سوتیلے؟ ذرا سے جسمانی عیب ہے بچے میں، نہ بیتا ہے، چلنے میں مسئلہ ہے، حافظ صاحب. سچ بتائیے کہ آج ہمارے ہاں نابینا لوگوں کو لوگ حافظ صاحب نہیں کہتے؟ یہ مقام ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کہتے؟ CA کیوں نہیں کہتے اس کو؟ MPA کیوں نہیں کہتے اس کو؟ یہ ہمارے دل میں دین کی بات ہے. جو 2-3 سال اسکول میں فیل ہوتا ہے نا، اس کو اٹھا کے کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو حافظ بنا دو، بس دے کے جا رہی ہوں، آؤں گی نا تو یہ حافظ بنا ہوگا. یعنی حافظ سے پھر اوپر نہیں ہم بڑھے، یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں وہ مائیں چاہیے آج کے دور میں جو کہیں ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے. کون سا عالم؟ 13 سالہ ڈگری والا؟ نہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر کی آیت ہے. کون ہوتے ہیں عالم جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اصل علم ہے ہی خشیت کا نام. واللہ ہی اگر علم آ جائے سچا تو ہم سب جھگڑے چھوڑ چکے ہوں آج تک. یہ آج جو ہماری فرقہ واریت ہے نا, اور ہم نے دین کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹا, یہ خشیت نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک جگہ نا, تو دو بھائی لڑ رہے ہیں, خوب لڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے زمین کے ایک ٹکڑے بھی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں. اتنے میں ادھر سانپ کا ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے تو فوراً دوسرا بھائی اس کو, اور وہ اس کو بچانے لگ جائے گا. خوف ہے سانپ کا, خشیت ہے. جس دن میرے دل میں یہ خشیت ہوگی نا کہ اس جگہ بیٹھ کر میں نے جو لفظ بولے ہیں نا, ایک ایک لفظ کل میں نے بھگتنا ہے, تو میں یہاں آ کے سوچ کے بولوں گی, اور میں نے واہ واہ اور سبحان اللہ اور نذرانے اور واہ جی واہ تو یہ کرانا ہے, تو میں کہوں گی کس نے دیکھنا ہے جو میں ان کو آج ان سے باتیں لے جاؤں, اپنی تعریفوں کی لے لوں. ہمیشہ یاد رکھیے, علم وہ جو آپ کو اللہ سے جوڑے. مجھے پتا ہے اس بات کے بعد اسما نے تو مجھے اب کبھی نہیں بلانا, اتنی دیر بعد میری دوستیں آئیں, آپ نے آج پھر یہ موضوع چھیڑ دیا. لیکن اس زبان سے سچ نکلنا چاہیے, اور یہ کوئی بری باتیں نہیں کر رہی میں آپ سے, میں آپ سے سچ کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہم مسلمانوں نے 21ویں درجے میں آ گئے. 21ویں صدی ہے نا, اب تو 20 آپ دیکھ ہی رہے, 2016 ہے, 21ویں صدی چل رہی ہے نا. ویسے ہم باشعور ہیں, آئی فون ہمارے پاس 7 نمبر, گاڑی ہماری 2016 کی تو ہے, چلو آنے والا ایک دو چار مہینے بس 17 کی مثال دے دیں گے, گھر ہمارا سب سے اعلیٰ علاقے میں, اور دین وہ پرانے دور کا دین, دادی کا نانی کا, وہ کوئی دلیل پیش کر دینا. اچھا مزے کی بات دیکھیے, میں کسی کی بات سن رہی تھی, بڑی اچھی لگی مجھے ان کی بات, کہہ رہے ہیں آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا, کوئی لوگ کچھ کام غلط کر رہے ہیں نا, مثال ہے کوئی گڑبڑ ہے, کوئی دین کا حکم نہیں مان رہے. تو میں انہیں کہوں بھائی بات سنو, تو میں آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, اللہ تو کہتا ہی ہے, یعنی اتنا سیریس نہیں لیتے. پھر اگر ذرا سی کوئی بات ہو رہی ہے نا, تو میں آپ کو کہوں فلاں عالم نے آپ کو پتا کیا کہا, کیا کہا ہے, یعنی ان کا پوائنٹ کیا تھا, اللہ کی بات قرآن کی آیت کو حوالہ بھی دے دینا, او ہاں جی پھر ہم کون سے اچھے مسلمان ہیں, ہم سے کہاں عمل ہونا ہے. یہ ٹون ہوتی ہے لوگوں کی, اور جہاں کسی عالم یا مفتی صاحب کے اچھا اور کیا کہا انہوں نے, یعنی ان کا خیال کیا تھا کہ آج ہم اللہ سے زیادہ عالموں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. اور آج بھی سینہ در سینہ جانے والے علم, علم تو سینہ در سینہ کیا آئے گا, توہمات اور اس طرح کی چیزیں. اور مزے کی بات دیکھیں کہ آج ہم دین کو مناتے ہیں, یہ جو لفظ منانا ہے نا, اس کو لکھ کے ذرا بعد میں سوچئے گا, سیلیبریشن کہہ لیں انگلش میں, منانا, یہ تو صحابہ نے کبھی نہیں منایا تھا, وہ تو کرتے تھے. بدر منائی نہیں گئی تھی, بھگتی تھی, احد منائی نہیں تھی, اگلے سال ان کی برسیاں نہیں کی تھی, منایا تھا انہوں نے, منایا نہیں تھا انہوں نے, کیا تھا. آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے, آپ کو سچے اور پیور مسلمان نظر آئیں گے وہاں کھڑے ہوئے, جوہد مسلسل. آج صبح کی ہماری جو کلاس تھی, آپ میں سے بہت ساروں کو پتا ہوگا, بہت ساروں کو نہیں بھی پتا ہوگا, ہفتے کے ساتوں دن آپ کے لیے موجود ہیں اللہ کے حکم سے. کیا یہ آپ اپنی سہولت کے مطابق ہفتے میں ایک دن یا دو دن یا ویک ڈیز یا ویکینڈ آئیے علم لے لیجئے, کیا مسئلہ نہیں چاہیے. آج سورت حج پوری ہوئی ہے ہماری اس فیلو خدا کلاس میں, میرا دل کر رہا ہے میں اپنی باتیں چھوڑ کے آپ کو اس کی ریکارڈنگ چلواؤں, مجھے یقین ہے آپ اس سے زیادہ انجوائے کریں گے. اللہ نے تو ہمیں امت کو ایک منصب دیا تھا, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا, تم کن فرقوں اور گروہوں میں پڑ گئے؟ ابو بکر کا کیا فرقہ تھا, عثمان کا کیا فرقہ تھا, عمر کا کیا فرقہ تھا, بس وہی فرقہ تم اپنا بنا لو. اور اگر ان کا فرقہ کچھ اور تھا اور تمہارا کچھ فرقہ اور ہے, تو یہ بعد کی پیداوار ہے, یہ اس دور کی پیداوار نہیں ہے. اس لیے آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس محرم کے مہینے سے ہی الرٹ کرنا ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ درس میں بات کی کہ بس آپ یہ کیجئے, اس دفعہ میرے ساتھ چلیے, اللہ زندگی آپ کو بھی دے مجھے بھی توفیق دے. محرم ہے نا, پھر اگلا سفر ہے, پھر ربیع الاول ہے, ربیع الثانی ہے, جمادی الاول ہے, جمادی الثانی ہے. ایک سال کا ٹارگٹ بنا لیں, یعنی آپ یہ 7-14 کون سا مہینہ نک چلا ہے ابھی محرم, یہ کون سا اسلامی مہا سال کون سا چلے, آپ سے ہی پوچھتی ہوں, میرے دماغ میں ابھی کل بھی بولا لیکن ابھی 14-38 شروع ہے, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے ایک سال پورا آج محرم سے لے کر اگلے ذلحج تک, آپ اور میں ہم سب نیت کرتے ہیں ہر مہینے کا ایک موضوع سننا, محرم اسلام میں کیا, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا نیکیاں ہیں, اور قرآن سنت کی عینک لگا کے سننا. अखबारों में से नहीं पढ़ना, हमारे दीन का सोर्स पहले तो अखबारें थी और अब व्हाट्सएप है और वाइबर है और फेसबुक है। एक एक मैसेज आता है, दूसरा कट से दूसरा आता है, तीसरा आता है ये कर दो योगा, तीसरा आएगा उसके खिलाफ है, ये आज हमारा चल रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं कहाँ से, टीवी से पढ़ते हैं। पढ़े अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो लिहाजा अगर इस एक साल में हम सिर्फ 12 महीनों का असल इस्लामिक एंगल देख लेना, एक इस्लाम का यकीन करें बहुत बड़ा इल्म हम ले चुके होंगे, क्योंकि हम दलील के साथ जब देखेंगे तो अगर कोई है नेकी तो हम क्यों ना करें, सीधी सी बात है। आप नहीं चाहते कि आप नेकियां करें, या मुझे आपसे कोई बैर होगा कि आपकी नेकियां छीन लो? वाकई को मुहर्रम के नफिल थे, आप पढ़े मेरे कहने पे, आप पढ़ेंगे या आपको मैं रगबत दूंगा तो मुझे भी अजर मिलेगा, बजाय इसके कि आप कोई नेकी कर रहे हैं और मैं आपकी नेकी मना करा दूं, ना 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 करना, तो मुझे गुनाह नहीं होगा क्या इसका? पूरे शौर के साथ कहूंगी कि अगर मैं आपको किसी चीज से रोक दूं जो सुन्नत में है और सहाबा करते थे, और आप मेरी वजह से छोड़ दें कि भाई इनको कुछ आता ही होगा तो इन्होंने कहा, तो उसका बवाल सारे का सारा मेरी गर्दन पे पड़ेगा कल अल्लाह के हाँ, मैं आपकी मुजरिम हूं, आप क्यामत के दिन जाकर मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं कि अल्लाह हम तो अच्छे खासे कह रहे थे, ये इन्होंने पता नहीं हमें क्या कह दिया। और सेम थिंग ऑपोजिट भी है, मैं आके आपको एक ऐसा नया अमल सुना जाऊं आज जो आपने कभी नहीं किया, आप कहते हैं कुछ तो पढ़ी लिखी लग ही रही है, कुछ सही कहा होगा, आप मेरे कहने पे वो वजीफा शुरू कर दें, ना वो अल्लाह ने कहा, ना सहाबा ने किया, ना नबी ने किया, तो कल अल्लाह मुझसे पूछेगा इधर आओ, उनको तो छोड़ो जो तुम्हारे कहने पे पढ़े थे, यकीन करें अवाम ने बच जाना है, अल्लाह ने बेनिफिट ऑफ डाउट में बड़ी उम्मत को बचाना है, असल पकड़ आनी है इल्म वालों की। हाँ अवाम की इस पे जरूर आएगी कि इल्म क्यों नहीं लिया, जान के जाहिल क्यों रहे, लेकिन जिन्होंने दूसरों को आलिम बनाकर आगे रखा, जिन तुसी जो कहोगे ऐसी वही करना है, वो पकड़े जाएंगे। अगर मेरी मर्जी से आप कोई नेकी का काम करने लग गए जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, तो फिर याद रखिए ये बात मेरे आपके लिए दुरुस्त नहीं होगी। इसके लिए जरूरत है सबसे पहली बात दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बि श्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह थोड़ा करना है, सुच्चा करना है, खरा करना है काम, हमें शक है छोड़ देते हैं, यकीन है ले लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगली चीज जो अपने लिए मैंने आपने लेनी है ना, कि कोई काम आज के बाद नेकी का करने लगूं तो मैंने एक लम्हे के लिए जरूर सोचना है इसकी असल क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहां से बना, और ये अगर बना ही आज से कोई 10 साल पहले है तो वो पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक के दौर में लोग क्या करते थे, क्या करते थे। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह, ये जो मैंने चंद बातें की है ना, इसको आप हर महीने एक दफा सुन ले। अब चंद बातें आपके सामने रखूंगी खास तौर पे स्पेसिफिकली कि मुहर्रम के साथ क्या है, दो बातें मैंने अभी तक छेड़ी हैं। नंबर एक कि मुहर्रम शोक का महीना है, अब आपका शरह सदर है कि ये शोक का महीना नहीं है। दूसरी बात, मुहर्रम में शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो देखिए इस मुहर्रम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे बताई थी, मैं ज्यादा रेफरेंसेस में ना जाऊं और सिंपल अपने लफ्जों में अगर आपको बता दूं तो शायद आपके लिए वो बात आसान होगी। और वो क्या है कि नबी सल्लम ने हज्जतुल विदा का मौका था, एक ही तो हज किया आपने सारी जिंदगी। अच्छा ये जुमला मैंने बोला ना, तो मुझे जब पहली दफा ये बात पता चली थी ना, शऊर जब शुरू होता है बंदे का उसी वक्त ही पता चलता है, तो जब मुझे पता चला ना कि नबी सल्लम ने सिर्फ एक ही हज किया था, सच बताऊं वो मासूम जहन परेशान हो गया था कि मेरे नाना बू ने तो 20 हज किए हैं और ये पाकिस्तान से जाते हैं हज करने, तो अल्लाह के नबी ने एक क्यों किया, क्या वो कम नेक थे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एक बच्चे का बच्चे की सोच कह लीजिए कि अल्लाह के नबी ने बस एक हज किया, कुछ नहीं पता था। हम सोचते हैं ना सऊदी अरब में रहने वाले हर वक्त हज करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये ख्याल आया। फिर जब सीरत पढ़ी फिर तो वो आंखें खुली। मैं यकीन करें जब मैंने फर्स्ट टाइम रहीको मखतूम खुद पढ़ी थी, मैं खुद से शर्मिंदा थी, कहती थी शुक्र है ये मैंने आज पढ़ ली है। और आपको मैं बस मजे की बात बताऊं कि मैंने तफसीर भी पूरी पढ़ ली हुई थी एक दफा किसी एक टीचर के साथ, मैंने सीरत उसके बाद पढ़ी, मुझे ये सूरत तौबा, अब आपको मैं उलझाऊंगी तो मुश्किल लगेगा ना, सूरत तौबा की तफसीर की जब मैंने शान नजूल पढ़ी तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि अल्लाह के नबी ने अबू बकर के साथ अली को भेजा और जाके कह दिया मुशरिकों को कह दो 4 महीने इधर रो गए, इसके बाद कोई मुशरिक हज करने नहीं आ सकता है, ये क्या हो रहा है? मक्का तो फतह, मेरे जहन में क्या आता है था कि नबी यानी कोई नहीं पता था फतेह मक्का कब हुआ, कोई नहीं पता आपका हजरतुल विदा कब था, उम्रा कजा क्या था, हुजुदुल खुदैबिया क्या थी। अब तो ऐसे याद है जैसे खानदान के बच्चों के नाम याद होते हैं, नहीं याद था। और जब वो नहीं पता तो कुरान की तफसीर क्या करनी है। कई लोग हैं वो इसमें, अब मैं आपको बीच में स्टॉप ही कर रही हूँ क्योंकि फिर आपकी सोच बाहर चली जाएगी, यानी तफसीरत पढ़े बगैर आप कुरान की तफसीर समझ ही नहीं सकते, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लेकर आएंगे, राइट। तो जो मुहर्रम के महीने के बारे में मैं आपको बता रही हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया, मिना का मैदान था, अल्लाह आपको और मुझे हम सबको लेकर जाए और हम वहां जाके कबूलियत वाले हज करें। हदीस में आता है और रेफरेंस भी आपको बोलूंगी जरूर, सही बुखारी 1742, 1742 नंबर की हदीस है। आप खुद जाके सही बुखारी में इसको डिटेल से पढ़ लें। नबी सल्लम ने कहा कि तुमको मालूम है आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने कहा ये हुरमत का दिन है। और तुमको पता है ये कौन सा शहर है? अच्छा क्या सहाबा को नहीं पता था? पता था पर बोलते नहीं थे आगे से, हमें तो आता भी कुछ नहीं, फिर भी चुप नहीं रहते, तो वो तो बोलते भी नहीं थे। खैर आपने कहा शहर कौन सा है? अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। भला क्यों करते थे? कहते थे शायद नबी सल्लम कोई नई बात बता दें। जो बड़बड़ के अपना इल्म शो करते हैं ना, तो उस्ताद कहते हैं छोड़ो इनको क्या बताना, इनको तो सब कुछ पहले ही आता है। तो साहबा और सीखना चाहते थे। खैर फिर आपने कहा कि ये हुरमत वाला शहर है और क्या तुमको ये भी मालूम है ये कौन सा महीना है? जवाब फिर वही था साहबा का कि अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो आपने फरमाया ये हुरमत का महीना है। अब ये तीन बातें कहकर जरा सुनिएगा। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इस तरह हराम कर दी है जैसे इस दिन की हुरमत इस महीने और इस शहर में। शायद आपने गौर नहीं किया इस एक हदीस पे, तो अगली बात से तो ज्यादा अच्छा समझ आएंगे। इब्ने उमर की रिवायत है इब्ने माजा में, 3932 नंबर। इसलिए बोलती हूँ कि आप जाके खुद भी पढ़ें। आपके घरों में इंशाल्लाह 6 किताबें तो होंगी ना हदीस की, सिया सित्ता का सेट तो है ना सबके घर में। कौन सी बुक्स हैं बल्कि बाय द वे सिया सित्ता में? सित्ता किसको कहते हैं? 6 को, शाबाश। और सहा सही, यानी हदीस की 6 सही किताबें जिसको हर मसलक के लोग मानते हैं, ऑथेंटिक बुक्स। कौन कौन सी हैं, कोई दो चार बोलें जरा सब। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, तिर्मिजी, अबू दाऊद। यानी आप सोचें जी, ठीक है, जजाकल्ला खैर। आप अच्छी बात है कि आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जिक्र किया। आप देखिए कि आप जाके एक सवाल लिखें आज, यहीं लिख जाए अपनी 10 दोस्तों और 10 रिश्तेदारों से पूछने जाके, ऐसे अच्छे मूड में फोन पे बातों के, अरे सुनो ये सिया सित्ता में कौन कौन सी किताबें हैं? क्योंकि ये क्या, ये कोई नया मसाला आया है? वल्लाही सिया सित्ता का लफ्ज भी नहीं पता लोगों को कि ये किताबों के नाम है, लेकिन ये हदीसें ये हमारे घर में होनी चाहिए। जब डायरेक्ट रिसोर्सिस पे आप हदीस में जाते हैं, आपको कौन इधर उधर कर सकता है? आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है, प्यारे नबी की जुबान से निकला हुआ। तो हदीस बड़ी प्यारी है, जरी मोहब्बत से सुनिएगा क्योंकि अल्लाह के नबी की जुबान के मोती हैं। हजरत इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ का तवाफ करते देखा। इमेजिन करें, पहली हदीस कहां सुनाई? मीना की थी। अब क्या काबा का तवाफ, और आप फरमा रहे थे काबा तू कितना पाकीज़ है और तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ है और तू किस कदर अजीम है, तेरा एहतराम कितना अजीम है, यानी तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। दिल में जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें, क्योंकि जो अल्लाह के नबी का नाम सुने और दरूद ना भेजे तो अल्लाह की रहमत से दूर है। फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के हाँ मोमिन की हुरमत। अब नोट कीजिए ये बात है असल में गौर की, मोमिन की हुरमत तेरी हुरमत से बढ़कर है। हम काबा की कितनी हुरमत रखते हैं, पीछा ना करो, बैक नहीं करनी, पाँव नहीं करने। यहां बैठे हैं ना, कोई लेटा होगा तो कोई देखिएगा, नानी दादी आएगी कहेगी किबले की तरफ मुंह किया हो, किबले की तरफ पाँव किए हुए, कितना मशहूर है हमारे कल्चर में। नहीं ऊपर कुरान रखे हो तो नीचे जूतियां नहीं रखते लोग अलमारी में, कहते हैं कुरान की बेइज्जती है। जाहरी ताजीम तो बड़ी करते हैं, कुरान ने हाथ से छूट गया तो उसके वजन काटा तोल के देते हैं, इज्जतें करते हैं हम जुबानी जुबानी, कहा काबे की एक हुरमत है लेकिन मोमिन की हुरमत तेरी हुरमत से बढ़कर है, यानी काबे की एक हुरमत और मोमिन की तीन हुरमतें, इसकी जान, इसका माल और इसकी इज्जत। हमेशा दूसरे मुसलमान की इज्जत पे गौर करें। मैंने किसी की बेइज्जती नहीं करनी, इंशाल्लाह मेरा दिल है अगर इन्हीं दिनों में और कहीं लेक्चर हो तो सिर्फ इसे एक तीन हुरमतों पे भी बात करनी है अलग से, क्योंकि इस मुहर्रम के महीने के बारे में अब एक और बात नोट कीजिए कि हम मुसलमान आज के इसकी हुरमत से भी आगाह नहीं है। बाप का कातिल सामने आ जाता था अरबों के, हाथ नहीं उठाते थे, कहते थे नहीं मुहर्रम का महीना गुजर जाएगा फिर बात करेंगे। आज आप और मैं, डेट देखिए 9 तारीख है कि 10 है, आज 9 है कि 10, जी 9 अक्टूबर है ना, और मुहर्रम की आज 8 है ना। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं आपसे पूछूं एक बात बड़ी पर्सनल, 8 दिन हो गए हम इतने प्यारे महीने से गुजर रहे हैं ना, कोई लड़ाई हुई हमारे घरों में, झगड़ा? हमने अपने खानदान से फोन पे, माँ से, बहन से, भाभी से, काम कोई करती हैं सिस्टर तो जॉब पे, दोस्तों में, घर में, बच्चों से ही, क्या हमने ये कहकर उनकी बात को टाला कि इस महीने में मैंने झगड़ना नहीं है, गीबत नहीं करनी, मैंने लड़ाई नहीं करनी? यानी होती लड़ाइयाँ रुक जाती थी, कहते थे नहीं मुहर्रम का महीना आ गया, और आज हमने इसको जंगो जिदाल का महीना बना लिया। तो आज मुसलमानों में ये भी कमी आ गई कि हम इस महीने के अंदर भी लड़ाई झगड़े करते हैं, और वल्लाह ही ज्यादा करते हैं। शिया सुन्नी फसादा जितने मुहर्रम में होते हैं बाकी दिनों में तो नहीं होते, सेलफोन्स लोगों के मुहर्रम भी बंद किए जाते हैं, झगड़ों के खतरे इसी में होते हैं। कैसे हम मुसलमान बचेंगे आज के बाद, अगर बाकी जितने दिन रह गए हैं 12-21 दिन अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के तकरीबन, आज से नियत करते हैं, मैं भी आप भी, शौहर से झगड़ा होने लगा था नहीं करना मुहर्रम है, बच्चे तंग कर रहे हैं, बेटा मैं आपको कुछ नहीं कहती, मुहर्रम के बाद बात करूंगी, कोई हक लेता है तो ले जाए, कोई कोई आपकी दोस्त आपको हेलो करके कोई एक दुख सुनाती है जो असल में गीबत थी, तो बहन ये हुरमत का महीना है, हमने किसी की इज्जत नहीं पामाल करनी। आज तो इसकी बात ही नहीं रही। मुहर्रम इंसानियत का एहतराम सिखाता है। चोर के खबरदार, चोरियां करेंगे 11 महीने मुहर्रम में चोरी नहीं करनी, क्योंकि माल हराम है हमारा एक दूसरे के ऊपर, कभी आज है ये तसव्वुर? फिर कैसे मुहर्रम को की इज्जत करते हैं? मुहर्रम में तो सब तलवारें खत्म, बंद, जुबान भी लॉक कर दें, हाथ भी दूसरे को नहीं, जान, माल और इज्जत किसी की ले नहीं सकते, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो हमें फिर हमारी नेकियों से महरूम कर देगी। और नबी सल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है 8931 नंबर की, फरमाया मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मोमिन वो होता है जिसकी तरफ से लोगों को अपनी जान और माल का अमन हो। आप अपना पर्स रख के कहीं जा नहीं सकते मस्जिद से भी बाहर, कोई पता नहीं क्या हो जाए घरों में, आप यहां तो अल्लाह का हुक्म से सुकून है, आप अपने मुल्कों को देखिए, चोरियां चिकारियां देख लीजिए, घर की मासियों पे आप यकीन नहीं कर सकते, ड्राइवरों पे आपको यकीन नहीं है, स्कूलों में बच्चों के टीचरों और स्टूडेंट्स का मामला नहीं पता किसी को, तो फिर हम मोमिन कैसे हुए? इसलिए जरूरत है। और कत्ल कितना आम है, आप देखिए, आप जरा पिछले 9 दिन की अखबारें पाकिस्तान की, इंडिया की, या जहां के मुसलमान मुल्कों की खोलें, उसमें एक खबर होनी चाहिए थी, इन 9 दिनों में कोई कत्ल नहीं हुआ, किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी, कोई किसी के ऊपर स्कैंडलिज्म नहीं हुआ, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है। फिर हम मानते हैं कि लोगों को मुहर्रम की अजमत का ख्याल है, तो शऊर के साथ जिएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोमिन का कत्ल करना अल्लाह के नजदीक तमाम दुनिया के तबाह होने से ज्यादा है। नोट करें, पूरी दुनिया तबाह हो जाए ना तो अल्लाह ताला कहते इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक मोमिन ना मरे, मोमिन अल्लाह को इतना प्यारा लगता है। निसाई की रिवायत है ये 3986 नंबर की, तो आज कितने गाजर मूलियों की तरह मोमिन तबाह हो रहे हैं। और माल की हुरमत, हारिस बिन बरसा कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के दौरान दो जमरात के दरमियान, वही जो जिसको हम अपने कल्चर में शैतान कहते हैं, वो जमरात होते हैं, उनके दरमियान ये कहते हुए सुना, फरमा रहे थे, जिस शख्स ने झूठी कसम के साथ किसी मुसलमान का माल हासिल किया वो अपना ठिकाना आग में बना ले। तरगीब व तरहीब की रिवायत है 1834। आज दूसरों का माल खाते हैं, कहते हैं रिश्वत के बगैर काम ही नहीं चलता। उम्रे के वीजे नहीं लगते रिश्वत दिए बगैर, हज का वीजा नहीं लगता आपका रिश्वत दिए बगैर, आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान मुल्क हैं? सोचने की बात है। और रह गई बात दूसरों की बुराइयां करना, तो अल्लाह हम सब औरतों को हिदायत दे। ये तो हम मुसलमानों की औरतों की बीमारी है। आपने फरमाया जो शख्स अपने भाई की इज्जत से इस चीज को दूर करेगा जिसे ऐबदार करती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके चेहरे से आग को दूर करेगा। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 27543 नंबर की। क्या पता चला? आप बैठी हैं अभी, ये दर्स ख़त्म होगा ना, तो मैं उठ के अंदर चली जाऊंगी, आप भी सारे अपने अपने कामों में लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखिए, पता नहीं हम कहाँ बहक चुके होंगे बातों में। कोई किसी का पुरानी बातें, दूसरों की इज्जत, कोई आया नहीं, आते ही उनको शौक ही नहीं, आना ही नहीं था दर्स में, तो आते ही नहीं है। अब क्या करें आप, हम उसकी इज्जत को खराब करें। इतने में आप बीच में बोलते हैं, देखें आप उनके बारे में ऐसा ना कि मुझे पता है कि उनको आना था लेकिन वो इस वजह से नहीं आई। हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने मुसलमान भाई और बहन के लिए हमेशा खुशगुमान रहे। किसी को बुलाया वो आया नहीं, वो तो लेट ही आते हैं। भाई क्या पता वो बेचारी का एक्सीडेंट हो चुका हो, क्या पता वहां रोड ब्लॉक हो, पता नहीं वो बीमार हो गई। हमेशा अच्छा गुमान रखो। और वो इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह की बात कि अपने भाई के बारे में बात सोचो ना तो 100 उजर पेश करो, ये हो गया होगा, ये वजह नहीं आई, ये बीमारी, ये उजर, और 99 चीजें कहने के बाद फिर कहो मुझे लगता है मैं उस बेचारे के हालात को समझ ही नहीं पा रही जिसमें वो इस वक्त मुबतला। यानी 100 उजर दें दूसरे को, ना कि हम उनको डिस्कस करना शुरू हो जाएं कि आपको तो दीन का शौक ही नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी हाथों से और हमारी जुबानों से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज हो जाएं, आईने बने, हम आईने बने। नबी सल्लम ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है, वो इसको इसके नुकसान से रोकता है और इसकी पीठ पीछे इसका दिफा करता है। या अबू दाऊद की रिवायत है 4918 नंबर की। वाकई हम करते हैं ऐसा? हम तो जहां बैठते हैं ना उनके मुताबिक बात शुरू करते हैं। तीन दोस्तें बैठी हैं ना, एक उठ के पानी लेने जाएगी ना तो दो उसके ऊपर बात कर देंगी, और वो आएगा आ गई हैं ठहर जाओ, उसमें से पहली उठ के जाएगी ना तो वो दो आपके माशाल्लाह गुनाह धुलवाने के लिए बातें करेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी इस्लाह हो जाए। आप कहेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, हम अपनी दोस्तों में भी नहीं आप बोले, फिर क्या करें, किससे दोस्ती हो, क्या बेहतरीन है क्या बदतरीन है? इस पे मुस्तफा अहमद की एक रिवायत सुन लीजिए, 17998 नंबर की है। आपने फरमाया कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो होते हैं जो चुगलखोरी करते हैं। देखिए तकाबुल किस पे किया गया, एक तरफ ये कि अल्लाह याद आ जाए और दूसरी तरफ जो चुगलखोरी करते हैं और दोस्तों के दरमियान तफरीक यानी जुदाई पैदा करते हैं और बेगुनाह लोगों में ऐब तलाश करते हैं। बस हम अपना हल्का अहबाब को देख लें, अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को देख लें, क्या मैं ऐसी तो नहीं हूँ? तो जितना ज़्यादा आप और मैं इन चीज़ों की कोशिश करेंगे आप देखेंगे फ़ायदा होगा। तो जो बातें अभी तक की हैं उसको दोहरा देती हूँ। नंबर एक, मुहर्रम शोक का महीना नहीं है। दूसरी बात, शादी ब्याह हो सकता है। तीसरी बात है, इस ये हुरमत का महीना है, इसमें लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात से बचते हुए अपने आप को अच्छा रखना है। ख़ास तौर पर रिश्तों को मिलाइए, फोन करें, माँ बाप का हाल पूछें, भाई बहनों की बात करें, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी आदम के आमाल हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं और कतई रहमी करने वाले के आमाल कबूल नहीं होते। आप कहते हैं अपने मियाँ को कोई जरूरत नहीं अपनी माँ को मिलने की, इस औरत ने मुझे बड़ा दुख दिया, तो दे लीजिए आप, आपकी सास है उसकी माँ है। अब आप मुझे बताएं, आप अपने शौहर को उसकी माँ के खिलाफ करके जन्नत में जाएंगी? वो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना हो लेकिन आपके शौहर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी तरह आप अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ कर दें, कौन रोक सकता है आपको? ये इतना सा टुकड़ा है, इसको कौन रोकता है? तकवा रोकता है, ये जुबान को रोक लेता है कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ, भुगतनी पड़ेगी। इसलिए قطع رحمی اس اس مہینے میں خاص طور پہ الگ کرنی ہے. اور پھر آخری بات جس کے اوپر انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کافی اتنا ہی میں نے اتنا ہی ٹائم سوچا ہوا تھا, حالانکہ آدھا گھنٹہ اور بھی ہے ہمارے پاس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایوریج درس کا ٹائم اتنا کافی ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کے بعد میں سوالات کو میں شامل کر سکتی ہوں اگر, اور اسما میں بتا بھی سکتی ہیں کہ انہوں نے کتنا ٹائم سوچا ہوا ہے. لیکن جو آج کے اس موضوع کی آخری بات جس کو ضرور دہراؤں گی, اور پھر باقی چیزیں انشاءاللہ اسی مہینے میں جو باقی درس آتے جائیں گے اس میں ان کو لیتی جاؤں گی, وہ کیا ہے کہ لفظ ظلم پہ غور کیجئے گا. ظلم و ستم, اللہ تعالیٰ نے ظلم بندوں پہ بھی حرام کیا اور اللہ تعالیٰ خود بھی ظلم نہیں کرتا. خاص طور پہ آپ نے, میں نے اپنے آپ کو اس پورے مہینے میں اس سوچ کے ساتھ لینا ہے کہ میرے سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. ہم اپنی زبان سے بھی ظلم کرتے ہیں, ہم اپنی چرب زبانی سے تو بہت زیادہ کرتے ہیں, اور پھر کچھ اور چیزوں کو بھی کرتے ہیں. اب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں, میں چھٹی نہیں دے رہی, لیکن اب میرا دل ہے کہ آپ بلکہ اس موضوع میں, یا اگر آپ یہی سوال کریں کہ اچھا محرم میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یا پھر آپ مجھے بتا دیں, جیسے بھی چاہیں. تقریباً 10-5 منٹ اور لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہاں پہ رک جائیں گے. جی جی اسما, آپ شیئر کریں کہ آج جو باتیں ہوئی اس میں سے آپ نے اپنے لیے کیا لیا.
کیٹیگری میں تھے جس طرح کہ جہلیت میں لوگ کرتے آئے ہیں, اور اس میں میں بھی تھی. تو الحمدللہ یہ سن کے بڑی, پہلے تو یہ بڑی بات لگی کہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے, اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی
ایک بیٹی,
آپ تھوڑا یہ سمجھا دیں
جی. آپ دیکھیں کہ یہ عام مہینوں کی طرح کا مہینہ ہے, بالکل دل میں کوئی وہم نہ پالیں کہ اگر اس مہینے شادی کی تو گھر نہیں بسے گا اور اس میں خرابیاں ہوگی. بعض دفعہ میں دیکھا ہے کہ کوئی اس مہینے میں اچھا سا کوئی پروگرام بھی رکھ لے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, جھگڑا رکھتے ہیں. آپ نے کبھی سنا اس بارے میں کچھ؟ جی آپ ادھر.
محرم کو کربلا سے ریلیٹڈ کر کے تو اس وجہ سے سوگ کا مہینہ کہتے ہیں کہ کربلا میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی تھی, تو ان اس کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں, تو اس سوگ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ شادیاں والا ہیں. اور جہاں تک آپ مجھے قرآن پاک سے جڑ کے پتا چلا کہ شہادت تو سوگ کے لیے ہوتی نہیں ہے, جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک امت میں پوری میں یہ غلط ایک تصور پھیل چکا ہے کہ شہید کا سوگ منانا ہے, تو وہ اس لیے کرتے ہیں.
جی آپ کی جو بات تھی نا, میں اس کو سم اپ کروں. آج شروع میں میں نے کیا آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے اپنا دین تم پہ پورا کر دیا. اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پورا, آپ آخری نبی تھے, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, نہیں آیا, نہیں آئے گا, مانتے ہیں نا. واقعہ کربلا کب ہوا؟ پچھلے درس میں جو لوگ ساتھی تھے ان کو پتا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد, 61 ہجری کا واقعہ. آپ امیجن کریں اگر اللہ کے نبی کی زندگی سے شروع کریں نا, جس دن آپ پیدا ہوئے تھے, تو 61 اور 63, 123 سال تقریباً, 100 کچھ لگا لینا, 63 پلس 61 کو کر لیجئے, 62 کتنا ہو گیا, 124 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نا, جس دن آپ پیدا ہوئے, اس کے تقریباً 125 کے بعد یہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے کی بنیاد پہ آپ جو بھی کریں وہ دین کیسے ہوگا, سمجھے؟ دین تو پورا ہو گیا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں, تو 50 سال نصف صدی کے بعد ایک واقعہ ہوا, تو وہ واقعہ ایک واقعہ ہے, وہ بہت بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن اس سے بڑا واقعہ تو حضرت عثمان کی شہادت ہے, میں نے اس کو تو چھیڑا بھی نہیں ہے, وہ تو ایک خاص ماحول میں ہی سنیں گے آپ, جب آپ چاہیں گے کسی کو بھی ضرورت فائدہ ہوگا تو میں کر دوں گی. میں نے آپ سے اس لیے نہیں چھیڑا کہ آپ میں سے الحمدللہ کسی کا ایشو ہی نہیں ہے, ہم مسلمان ابھی اس حد تک تو نہیں گزرے گئے کہ ہم اب ان واقعات کو بنیاد بنا کر دوسروں کو, امت کو توڑیں اور پھاڑیں. لیکن کہنے کا مطلب کہ دین کا کیا کام, محرم میں کیا کرنا ہے, سفر میں کیا کرنا ہے, ربیع الاول میں کیا کرنا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے نا. तो फिर 50 साल बाद कोई नया तरीका शुरू कर ले तो वो दीन कैसे हो सकता है? बात समझ गया? ये तो ऐसे जैसे आज 2016 में कोई बात हो जाए रमजान में, तो हम उसकी बुनियाद पे आज से वो काम रमजान में करना शुरू कर दें। ये एक हादसाती वाकयात, ये दूसरी चीज है, ये दीन नहीं हो सकता, ये बाद के हालात की बात होती है। तो लिहाजा ऐसी किसी चीज को इसको सोका नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, और अल्लाह ताला तो इसको फस्तबशिरू, खुशखबरियों की बातें करते। और फिर आखिरी बात ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी को देख लीजिए कि आपके अपनी जिंदगी में, चलिए एक आपने कहा है तो मैं एक छोटी सी आपको डायमेंशन सिखा दूं। बिलफर्ज आप ये जुमला लिखें, बिल फर्ज ये शहादत हुसैन का वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो जाता, पॉसिबल था ना? तो आप क्या करते? मेरा सवाल वाज़े कि अगर ज़ारे हसन और हुसैन दोनों थे वाकया करबला, 50 साल बाद नहीं, बिल्कुल दौरे नबी में हो जाता, तो क्या करते आप? आपने वही करना था जो आपने हजरत हमजा की शहादत के मौके पे किया, मुसब बिन उमैर की शहादत के मौके पे किया। आप देखिए कि नबी सल्लम हजरत हमजा जो आपके तीन तरह से रिश्ते थे, सगा चचा, आपका दूध शरीक भाई यानी एक ही औरत का दूध दोनों ने पिया, और आपका दोस्त हम उमर यानी हम जोली था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल जिंदा रहे हैं हजरत हमजा की शहादत के बाद। और सबको पता है, जुबानी याद है कि शवाल के महीने में उहद की जंग हुई थी, हर साल शवाल का महीना आता था ना, 8 साल में एक बार तो आपने भी कहा आओ मेरे साथी, आओ हमजा को याद करते हैं, रोते हैं, सीना को भी करते हैं या कुछ करते हैं। और आप कहते हैं कि हजरत हमजा को, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आप समझेंगे, चॉप किया था, जैसे आप चॉपर में गोश्त डाल के कीमा बनाते हैं ना, हजरत हमजा को ऐसे नहीं शहीद किया गया था, चॉप किया था। क्या आप कहते थे कि हिंद मेरे सामने ना आना, तुम सामने आती हो तो मुझे अपना चचा याद आता है? आप इतने सदमे और दुख में थे कि आपके मुंह से निकल गई ये बात कि इस कौम को कोई नहीं हिदायत मिलनी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, सूरत आले इमरान की आयत है मेरी आंखों के सामने, कि अल्लाह ने कहा नहीं, आप अपनी मर्जी से किसी को हिदायत और गुमराही का फैसला नहीं कर सकते, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहेगा देगा। अल्लाह ने के नबी ने कह दिया इस कौम को कोई नहीं हिदायत मिलनी, कि इन्होंने तो अपने नबी का चेहरा जख्मी कर दिया। तो याद रखिए कि जब आपने हजरत हमजा जो के खून के रिश्ते थे उनके बारे में ये कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा आगे जाते हैं, गजवे मौता हुई थी, जिनको जिन्होंने सीरत पढ़ी है उनको याद है, जिनको नहीं है तो 8 हिजरी में मौता की जंग हुई थी। नबी सल्लम के सगे चचा के बेटे जाफर तैयार किसके भाई थे? कोई आप में से जानता है? जाफर तैयार उनके भाई थे, जिनके बेटे हसन और हुसैन है, हजरत अली के भाई थे, शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे जाफर के। आपको इतना सदमा था, इतना रंज था, आपने कहा कि लोगों इनके घर में खाना भेजो, जाफर के बच्चे यतीम हो गए हैं। लेकिन आपने जमादिल उला के महीने को कभी सोग का महीना नहीं बनाया। फिर अगली बार देखिए कि इस्लाम में सोग 3 दिन का है, वाजे हदीसें मौजूद हैं, कोई मर्द औरत 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं कर सकती सिवाय उस औरत के जिसका शौहर फौत हो, तो वो 4 महीने और 10 दिन की जेब जीनत को तरक करेगी। बुखारी की रिवायत मौजूद है, हजरत जैनब बिनते अबी सलमा जो थी रिवायत करती हैं कि अब सुनिए, जैनब बिनते अबी सलमा कहती हैं मुल्क शाम से अबू सुफियान के फौत होने की खबर आई, तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा, कौन थी उम्मे हबीबा, ने तीसरे दिन जर्द रंग की खुशबू मंगाई, यानी ऐसी खुशबू होती थी जैसे जाफरान होती है, और अपने रुखसारों और अपने बाजुओं पर मली और कहती क्या कि मुझे खुशबू की कोई हाजत नहीं है, लेकिन मैंने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखेगी औरत, वो किसी मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करेगी सिवाय खावन के लिए, तो लिहाजा मैं अपने बाप का सोग खत्म करती हूँ। अबू सुफियान बाप थे उम्मे हबीबा के, और बाप भी परदेश में फौत हुआ, तीसरे दिन बेटी आके मेकअप कर रही है क्यों, और कह रही है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे हाजत नहीं, बट मैं अल्लाह के नबी के इस अमल जुमले पे अमल कर रही हूँ कि जो औरत अल्लाह और आखरत पर ईमान लाती है वो 3 दिन के बाद सोग खत्म करे। तो ये सोग के खात्मे का ऐलान है। आपको तो यही लफ्ज हजरत हफ्सा ने बोले हजरत उमर की वफात पे, जो उनके बाप थे, उन्होंने खुशबू मंगा के लगाई और उन्होंने कहा मैं अपने बाप का सोग तीसरे दिन ख़त्म कर रही हूँ। बड़े हौसलों की बातें, हमारे तो दो एक एक साल तक शायद ईदें भी नहीं मनाते लोग, और बरसी भी, और कोई घर की बहू बेटी ज़रा अच्छा कपड़ा पहन तो ले तो कहेंगे इसको तो शौक, इसने तो शुक्र किया सास मर गई है, इसने तो खुशी मनाई है ससुर के मरने की। फिर इसी तरह उम्मे अतिया का, ये जो रिवायत आपको मैंने दी ना, ये बुखारी की रिवायत है किताबुल जनाइज़ की, आप जाके इसका रेफरेंस नंबर लेना, मेरे से आके ले लें बाद में। फिर इसी तरह उम्मे अतिया एक सहाबिया थी, उनका बेटा फौत हो गया, उन्होंने तीसरे दिन जर्द खुशबू मंगाकर अपने बदन पर लगाई और कहा हमको खाविंद के सिवा यानी शौहर के सिवा किसी के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से रोक दिया गया। तो आपका सोग अभी ख़त्म नहीं हो रहा, सोचने की बात है ना। तो लिहाजा इस तरह से ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी से ज़्यादा मैं और आप तो नहीं दीन को समझने वाले। फिर इसके बाद ये जो शादी का मौजू शुरू से चलता जा रहा है, बास लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया ना उस बेला कि इस महीने के अगर शुरू के 10 दिनों में कोई अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करेगा तो बच्चा मनहूस पैदा होगा या नाकिस होगा, यानी शौहर बीवी अलग हो जाते हैं इन दिनों में। अब कुछ घरों में होगा तो ये बात है ना, शादी तो दूर की बात है, जिनकी शादियां हुई हैं वो अपने एक दूसरे के साथ नहीं आते। इसी तरह अरब में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे शवाल के महीने को मनहूस समझते थे, शादी नहीं करते थे शवाल में, और आपको तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, आप मेरी बात से समझे होंगे, जिनको पता है बोल दें। हजरत आयशा से शादी शवाल में की, रुख्सती भी शवाल में की, क्यों कि लोग ये ना कहने लग जाए कि शवाल की शादी मनहूस है। तो हजरत आयशा से अल्लाह के नबी को मोहब्बत थी, वैसी मोहब्बत अल्लाह सारे जोड़ों में डाल दे, आज तो वो मोहब्बत ही नहीं है जो वो असल वो मोहब्बतें थी। तो अल्लाह के नबी ने तो अपनी और अपने बच्चों की शादियों में हर बिदत तोड़ी, और आज हम अपनी मर्जी से इस तरह के काम करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात लोग जूता नहीं पहनते, यानी ये मैं कुछ चीज़ें आपके, मेरे पास एक बुक है इस्लामिक मंथ के नाम पे, ऑथेंटिक बुक है, तो वो कहते हैं कुछ लोग इस महीने में नंगे पांव फिरते हैं, गर्मी हो या सर्दी जूता नहीं पहनते, चार पाइयों को उल्टा कर देते हैं कि आराम से ना सो सके, और दूसरे गिरोह ने शादी और खुशी से रोक कर दीन में सख्ती की, इस्लाम ऐसी सख्तियों को नहीं मानता। अब ये जो करते हैं वो अपने ऊपर एक वो कहना चाहिए ना कि गुना बेलज़त, फर्ज पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे अजर ही मिलेगा ना, तो ये काम करने से वो तो बेचारे यही सोच रहे होते हैं अजर मिलना है। और खाने पकते हैं, मैंने देखा खाना भी ना पके तो लोग कहते हैं कि सीना भी नहीं कुबी होती, सीना कुबी भी नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी चीज़ों को हमें आम करना इल्म के साथ, ऐसी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर गौर करें, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अब शऊर आ रहा है, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। मज़े की बात देखिए कि ये एक कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासत तक सभी सोग में शामिल हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रेडियो और टीवी पर गाने चलते रहते हैं, हालांकि इस वक्त मुसलमान रोज़े से होता है और गाना सुनना रोज़े की ख़राबी का बायस है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में गाने बंद नहीं होते, हम मुहर्रम में बंद हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुहर्रम के महीने में गाने चलाए जाएं, जो चीज़ हराम है वो हराम है कभी भी हो, मकसद ये कि इसको रमज़ान से भी ज़्यादा अहम समझते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे, और जिन लोगों में ये चीज़ें हैं उनको अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन तौफीक दे कि वो इसको अच्छे तरीके से रहे। जस्ट एक रिमाइंडर है, हो सकता है पहला लेक्चर आप में से बाकी कुछ सिस्टर्स ने मिस किया हो, तो आशूरे का रोज़ा 9 और 10 दो दिन का रोज़ा रखिए, और किसी वजह से अगर 9 का ना रख सकें तो फिर 10 का भी रखिएगा, 11 का रख सकते हैं उसके साथ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 का रोज़ा रखते तो इसकी बहुत फजीलत है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ हमारे मंडे और ट्यूसडे बन रहे हैं ना, कल मंडे को 9th है, ट्यूसडे को 10th है, तो आप ये 2 रोज़े रख लीजिए। कोई वजह है अगर प्रॉब्लम है शरई कुछ भी है, मंडे नहीं कल रख सकते तो फिर परसों ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे का रख लें। सहाबियात अपने बच्चों को रखाती थी और वो कहती हैं हम बच्चों को मस्जिद ले जाते हैं, जब वो रोते भूख से तो हम उसको कपड़े की गुड़िया देकर बहलाते। माएँ बचपन से बच्चों को रोज़े रखना सिखाती थी, तो आज हमारे लिए क्या मुश्किल है। ठीक है, तो ये रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, और जो काम करने हैं वो अच्छे काम है वो ज़रूर कीजिए, जो अच्छे नहीं है उससे बचना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानियों के मामले फरमाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुबहाना कल्लाम व बिहम्दी का अशद अल्लाफ़िरका वतुब अलैक रबना तकबल मन्ना इन्नक अंत समील अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तवाबरहीम वसल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रबना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. یا اللہ ہمیں اس مصروف زندگی سے نکال کر اپنے لیے کچھ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم جو کچھ دنیا کا کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہے کل ختم ہوگا. یا اللہ ہمیں اپنی ابدی زندگی کی تیاریاں کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں علم دوست بنا دے. یا اللہ ہمیں وہ علم دے جس سے نفع حاصل ہو. یا اللہ بیکار چیزوں سے بچا, ہماری زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع ہونے سے بچا. یا اللہ یہ ایک نیا سال شروع ہوا ہے, اس سال کو ہمارے لیے علم کا سال بنا دے. یا اللہ سب ساتھیوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما. اپنی رحمت سے یا اللہ ہم سب سے تو وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہے. یا اللہ ضائع ہونے والے باطل ہونے والے اعمال سے بچا. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بندے بن کے جئیں. یا اللہ پوری دنیا میں اس وقت بے چینی اور افراتفری ہے. یا اللہ اے مالک تو اپنی رحمت سے آسانیاں فرما. یا اللہ یہاں بھی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, جو لوگ گھروں سے سن رہے ہیں, یا اللہ جو بعد میں بھی سنیں گے ان کو بھی یا اللہ ہماری دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ بیماروں کی بیماریاں دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مالی تنگیوں سے نکال دے, رزق حلال اور فراح عطا فرما. یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شوہروں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اس گھر پہ اپنی بے شمار رحمتیں فرما. یا اللہ جس محبت سے انہوں نے تیرا ذکر کیا, یا اللہ تو ان کا ذکر آسمانوں میں کر. یا اللہ اخلاص عطا فرما, ریاکاری اور دکھاوے اور شہرت سے بچا. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ گھر کے چھوٹوں اور بڑوں پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ناگہانی آفات سے بچا. یا اللہ شر سے بچا, حسد سے بچا. یا اللہ اپنے اعمال کی برائی سے بچا. یا اللہ ان کے بچوں کو دین دنیا میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کے شوہر کو دین میں ان کے لیے بہترین معاون بنا. اور یا اللہ ان کے سارے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ اور بھائی بہنوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو جس چیز سے محروم ہے اس کو عطا فرما, اور جو دیا ہے اس کی قدر کی توفیق دے. اور یا اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ جتنی پیاری نعمتیں دی ہیں اس کے زوال سے بچا. یا اللہ جان مال میں اور اولاد میں, اور یا اللہ دنیا کی ان گنت نعمتیں جو تو نے دی ہیں کبھی ان کو ختم نہ کر. یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کے ساتھ دنیا سے لے جانا. یا اللہ خوشی کے بعد غم, اور یا اللہ خوشحالی کے بعد تنگ دستی نہ دکھانا. صحت والی زندگی کے بعد بیماریوں والی بستروں پہ سسک سسک کے مرنے والی زندگی نہ دینا. یا اللہ اطمینان خوشی سکون دیا ہے تو یا اللہ اس کو ہماری زندگی کے آخری دم تک رکھنا. یا اللہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو جس دن ہم نے تیرے پاس آنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. یا اللہ یہ پکار ہمارے کانوں کو سنا دینا موت کے وقت. یا اللہ اس زندگی میں ہمیں اس دین کو پھیلانے والا بنا. یا اللہ اس شہادت حق کی گواہیاں دینے والا بنا. اور یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو شہادت کی موت دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, ہماری بہنوں, ہمارے بہنوں کے بچوں کو یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کی نظر سے بچا. یا اللہ ہمارے برے اعمال کے وبال سے بچا. یا اللہ ایسا مرد مومن بھیج دے کہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. یا اللہ ہمیں جن جرموں کی سزا ملتی ہے, یا اللہ ہمیں ان جرموں سے توبہ کرنے والا بنا. یا اللہ جو بھی جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا, تو جانتا ہے, تو دلوں کے بھید جانتا ہے, جو کہہ بھی نہیں سکتے ان کے بھی دلوں کی دعائیں قبول فرما. اور یا اللہ تو ہمیں ایک تڑپ لگا دے کہ تو ہم سے راضی ہے. یا اللہ ہمارے جتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان بھائی بہن نہ سمجھی سے ایسے کام کرتے ہیں جو تیرے نبی نے نہیں کیے اور نہیں کہے, یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں. یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس پیارے کلام کو شیئر کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں آج ہی اس چیز کے لیے فیصلہ کرنے والا بنا کہ ہم نے اپنی اگلی زندگی میں کیا کرنا ہے. یا اللہ ہمیں مرنے کے ساتھ جینے اور جانے کی تیاریاں کرنے والا بنا. اور یا اللہ جو حج کر کے آئے ہیں اب ان کو واپس ان کی جگہوں پہ لے آ، یا اللہ ان کی کلاسوں میں ان کو لے آ، یا اللہ ان کی نمازوں کو وقت پہ لے آ، یا اللہ یہ ہمارے حج اور نمازیں صرف رسم نہ بن جائیں، اور یا اللہ دکھاوے سے بچا، اور یا اللہ اپنی رحمت فرما، کمی بیشی سے معاف فرما، ہمارے استادوں پہ اپنی بے شمار رحمتیں فرما، اور ہمارے ماں باپ کو زندگیوں میں بھی عافیت دے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ٹھنڈی قبر کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ماں باپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ نہ بنانا، یا اللہ ہماری مستیوں پہ ہمارے ماں باپ نہ پکڑے جائیں، ہمیں اپنے ماں باپ پہ رحم کرنے والا بنا جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، اور یا اللہ ہمیں ہمارے ارادوں میں پختہ کر دے اور اس میں اپنی مدد شامل کر لے۔ یا اللہ دین کے جتنے پروجیکٹس ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے اس میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا یہ سب کیسے ہوگا، ہماری نظریں تیرے اوپر ہیں۔ یا اللہ گھر گھر میں دین کا دور کر دے، یا اللہ ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بچہ، ہر بھائی اپنے ہاتھوں میں یہ قرآن لے کر تیرے نبی کی سیرت اور سنت اور حدیث کو پڑھتا ہوا دیکھے۔ یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا رواج دین کا بن جائے، علم دوست بنا دے، اور یا اللہ ہمارے بچے بیٹھ کر اپنی آخرت کی باتیں کریں۔ یا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ دنیا کے کھیل سے آخرت کے کھیل اور آخرت کی خوشیاں عزیز کر دے، اور یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ صرف دو تین منٹ لوں گی آپ کے، اور جو ساتھی اگر گھر سے کوئی سن رہے ہیں ناروے والے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ شاید ادھر فلائر بھی ہوں گے رکھے ہوئے، آئے ہیں باہر سے آج صبح وہاں ایڈیٹر۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کل میں روح القرآن کے نام پر قرآن کا ایک تفسیر کورس ہو رہا ہے جس کا مونیر نہیں لیتے، تو بہت سارے ساتھیوں کی خواہش تھی اور میرے اپنے دل میں اس کا بڑا گلٹ تھا کہ جو گھر سے بھی نہیں سن پا رہے اور یہاں نہیں آ رہے تو کیا کیا جائے۔ تو پہلی تو آپ سب کو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اس کا الحمدللہ ہمارا پہلا پارا پورا ہو رہا ہے اس تھرسڈے کو۔ اس کی انویٹیشن آپ کو آئے گی نیکسٹ منڈے کی یا کل کلاس کے سے فائنل کریں گے۔ آپ اپنے فون نمبرز اگر نئے لوگ ہیں تو سسٹر ادھر فائزہ سسٹر ہیں ان کو دے دیجئے، بچیاں بھی ہیں، وانیاں کوئی بھی لے لے، تو آپ اپنا اپڈیٹ لسٹ میں ہمیں ہمارے ایڈ کروا لیں تو آپ اس پروگرام میں خوش شامل ہوں، جو اسٹوڈنٹس کی خوشی ہے۔ لیکن اس سے بڑی خوشی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی واقعی مجبوریوں کی وجہ سے صبح میں اسکول میں نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکسٹ منڈے، کل نہیں اگلا منڈے، ہم لوگ شام کو اسکول میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اونلی 3 days اینڈ 2.5 hours، 5 to 7:30، یہ اس گھر سے بھی بچیاں جاتی ہیں، یہ ساری جو ادھر بیٹھی ہیں یہ اس وقت میں نارویجن کلاس میں ہوتی ہیں، اور اسی وقت میں دوسرے روم میں آپ سب کو جو مائیں بھی ہیں اوروں کو بھی لا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ہم پہلے پارے سے روح القرآن کو شام کے لیے بھی شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے فبئی حدیث امبادہ یومنون، میں سوچتی ہوں اللہ واقعی ہم پہ مہربان ہے، بار بار موقع لاتا ہے۔ ففی ذالک فل یتنافس المتنافسون، چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، تو اپنے بزی اسکیجول میں سے نکلیے، جاب سے آ سکتے ہیں، یہ ٹائم بہت اپروپریٹ ہے کیونکہ اس کلاس کو رن کرنے والے سارے ہی ساتھی تقریباً جابس یا اسکولوں سے آتے ہیں، بہت اسٹرانگ ماشاء اللہ ساتھی ہیں جو آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ ہفتے میں 3 days کی بات ہے، 4 پھر بھی چھٹیاں ہیں، تو آپ لوگ ضرور اس پہ میرے سے پرسنلی ابھی بات کریں، فائزہ جی ادھر موجود ہیں ان سے بات کریں، اپنے نام بھی لکھائیں اور ایک دفعہ سنجیدگی سے اس کام کو کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک پارا آپ صرف پڑھ لیں، صرف ایک پارا، جو باتیں میں آپ کو آج شدت سے کہتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوں آپ رو رو کے دوسروں کو بتائیں گے، اور کب؟ اب نہیں تو کب، نو اور نیور، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ تو ضرور سوچئے اس کے بارے میں، اپنی دوستوں کو، بہنوں کو، جہاں تک میسج پہنچائیں، اور ہر طرح کی سہولت موجود ہے اس میں، ہم نارویجین کی ہیلپ بھی دیتے ہیں، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، تو جس کو طلب ہے وہ یہ کرے گا، جس کو نہیں وہ کہے گا وقت نہیں ہے، تو یہ ضرور لیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ ٹیسٹ نہیں کی نا دولت، करके देखिए, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे तो नेक्स्ट मंडे उसके लिए 5 o'clock है। आप लोग वैसे आके देखिए, लेकिन मुझे पता है वैसे लोग नहीं आते, जब तक इंटरेस्ट नहीं होता। आप बैठिए, मैं इधर ही हूँ, अभी नमाज के बाद हम बात करते हैं। आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछें, टेस्ट नहीं देने ना दें, असाइनमेंट नहीं करने ना करें, आपको बैठ के सुनना है सुने और सुन के चले जाएं, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं पहनना, बात करें, लेकिन अपनी हिदायत को अपने से दूर ना करें। और इसके लिए आपको 10 बसें बदलने के आना पड़े ना, इस वर्थ इट करना पड़ेगा। देखिए ना, सांस ले रहे हैं ना, तो अपनी सांस रुखड़ती है तो मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लेके लोग फिरते हैं, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपका थोड़ा सा वक्त लिया, इस पे फायदा होगा। इसी तरह बाहर जो साथी सुन रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन हम चाह रहे हैं कि वक्त से पहले हो, ताकि हम अप्रोप्रिएट कर तौर पे आपको ले सकें। और जितनी कोशिश करके कोई चीज़ लेंगे ना, कुर्बानी बड़ी है तो उसका अजर भी बड़ा है, लेकिन मैंने देखा अल्लाह उनसे काम भी बड़े लेता है। तो आप कहें कि अल्लाह मैं अपनी इस क्लास के लिए कुछ छोड़ूंगी, मैं जॉब छोड़ूंगी, या मैं टाइम से जल्दी आऊंगी, या मैं घर आके आराम करती थी वो नहीं करूंगी। अब देखिए आपके लिए घर से ही कितनी इंशाल्लाह मुआवनत हो जाएगी, ठीक है। कोई बात, कितने लोग सोच रहे हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपके लिए आसानियां करे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी नजर घड़ी